ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्री वृंदावन धाम की जय हो। हरे कृष्णा। तो श्री वृंदावन धाम में बहुत सारी विशेषताएं हैं और उनमें से प्रमुख विशेषता है मंदिर, यानी भगवान के विग्रह, भगवान के मूर्तियाँ, ठाकुर जी का अलग अलग स्वरूप श्री वृंदावन धाम में विराजमान है। प्रभुपाद जी कहा करते थे कि श्री वृंदावन में 5000 से अधिक मंदिर हैं। घर घर में मंदिर है, कोने कोने में मंदिर है, हर गली में हर रास्ते में मंदिर है। फिर भी उसमें बहुत सारे प्रमुख मंदिर हैं जो वृंदावन की शोभा है और वृंदावन का अस्तित्व उनसे ही जाना जाता है। तो ऐसे सारे विग्रहों का हम आज संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। तो गौड़ीय संप्रदाय में 7 मंदिरों का उल्लेख आता है। गौड़ीय मंदिर जो है मतलब चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय में, तो इसमें प्रमुख है राधा मदन मोहन, राधा गोविंद और राधा गोपीनाथ। ये 3 विग्रह कृष्ण के समय ही कृष्ण के जाने के पश्चात वज्रनाभ के द्वारा तुरंत ही बनाए गए थे। फिर उसके आगे 400-500 साल के बाद में राधा दामोदर, राधा श्याम सुंदर, राधा गोकुलानंद और राधा रमण, ये भगवान प्रकट हुए। फिर साथ साथ चैतन्य महाप्रभु के समय पर बांके बिहारी जी प्रकट हो गए, राधा वल्लभ जी प्रकट हो गए, इस प्रकार के बहुत सारे ठाकुर जी वहाँ पर हैं। तो सबसे पहले हम मदन मोहन जी की चर्चा करेंगे। वैसे तो हर एक विग्रह की जो कहानी है वो बहुत लंबी लंबी कहानी है, लेकिन संक्षेप में अद्वैत आचार्य चैतन्य महाप्रभु के अवतार होने के पहले श्री वृंदावन धाम में भजन करने के लिए आए थे और यमुना किनारे वो भजन करते थे, एक वट वृक्ष के नीचे, जिसका नाम पड़ा अद्वैत वट, जिसके नीचे बैठकर स्वयं अद्वैत आचार्य ने भजन किया था। भजन का मतलब जप किया था, भगवान को प्रार्थना की थी, तप किया था। तो जब वो भजन कर रहे थे तो उनके आंखों के सामने साक्षात मदन मोहन जी प्रकट हुए, जिनको वज्रनाभ ने बनाया था। जब कृष्ण के जाने के बाद में वज्रनाभ ने इस मूर्ति को बनाया तो उस समय केवल उत्तरा देवी उपस्थित थी, बाकी सब कुछ सब लोग जा चुके थे जिन्होंने कृष्ण का प्रत्यक्ष दर्शन किया था। तो उत्तरा देवी को वज्रनाभ ने दिखाया तो उन्होंने कहा कि इनके चरण कमल जो है वो साक्षात कृष्ण जैसे हैं, तो वे हैं मदन मोहन जी। तो ये मदन मोहन जी जब वज्रनाभ के द्वारा स्थापित किए गए वृंदावन में, तो कुछ काल में वो लुप्त हो गए। ये भगवान की एक लीला है, भगवान जब भी अपने विग्रह प्रकट करते हैं तो कुछ समय रखते हैं, कुछ लुप्त हो जाते हैं, फिर किसी के द्वारा दोबारा प्रकट होते हैं, फिर लुप्त हो जाते हैं, फिर प्रकट हो जाते हैं, फिर लुप्त हो जाते हैं, फिर कभी यहाँ से वहाँ जाते हैं, फिर वहाँ से आगे जाते हैं। तो अद्वैत आचार्य के सामने ये स्वयं प्रकट हो गए उनके भजन के प्रभाव से, तो उन्होंने उनका पूजन किया यमुना जी के तट पर। और यथावकाश जब ही चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव हुआ तो अद्वैत आचार्य शांतिपुर चले गए, मायापुर चले गए, यहाँ तक कि चैतन्य महाप्रभु का जहाँ जन्म हुआ उसके बाजू में ही उन्होंने अपना घर बनाया, अद्वैत भवन। फिर जो विग्रह थे वो पुरुषोत्तम चतुर्वेदी नाम के एक ब्रजवासी को दिए, और पुरुषोत्तम जी ने उनको बहुत अच्छी सेवा की, उनकी पत्नी बहुत अच्छी सेवा करती थी उनकी, बहुत एक माता के समान, और उन दोनों का भाव इतना श्रेष्ठ था कि मूर्ति में से भगवान मदन मोहन जी प्रत्यक्ष बाहर आकर उनसे बातचीत भी करते थे। यमुना के किनारे मथुरा में खेलते भी थे ग्वाल बालों के साथ। हाँ, तो भगवान का ये एक स्वभाव है कि जब शुद्ध भक्त उनको मिलते हैं तो शुद्ध भक्त से वो मूर्ति से बाहर आके बात करते हैं। एक बार नहीं, अनंत बार अनंत विग्रहों ने साधुओं से संवाद किया है। तो उनके घर में कभी खेलते थे बच्चा बनकर, तो कभी मूर्ति बनकर रहते थे। तो मैया बड़े प्रेम से, उसको क्या कहते हैं, रागानुगा भक्ति कहते हैं। रागानुगा मतलब उसमें कोई कठोर नियम नहीं होता है, लेकिन दिल से सेवा होती है। तो वो डंडा हाथ में पकड़ के डांट के मदन मोहन जी को भोजन कराती थी। तो एक बार मदन मोहन जी बहुत देर हो गए, बहुत देर खेलते रहे, आए नहीं समय पर, तो ये डंडा लेकर जमुना किनारे गई तो देखा अभी भी खेल रहे हैं। तो डंडा दिखा के धमा धरा धमका के उनको घर पे लेके आई, बोला बैठो यहाँ पर, समय पे आते नहीं हो, खाना नहीं खाते हो, बैठो अभी, ऐसा करके डंडा दिखा के। मदन मोहन जी काँप रहे हैं भाई से और भोजन कर रहे हैं। तो उस समय सनातन गोस्वामी वृंदावन में आ चुके थे और वृंदावन में उस समय कोई गृहस्थ रहता नहीं था। क्यों? आज तो पूरा कॉलोनी बना हुआ है उधर, उस समय वो जंगल था पूरा। जंगल में कोई गृहस्थ रहता नहीं, कभी वन में केवल सन्यासी लोग रहते हैं। तो भिक्षा मांगने के लिए उनको उस समय, आज से 500 साल पहले, उनको मथुरा जाना पड़ता था क्योंकि मथुरा में गृहस्थ रहा करते थे। तो जब ये डांट रही है मैया मदन मोहन जी को, तो ये दरवाजे पे भिक्षा मांगने को पहुँचे। तब वो बहुत मग्न थी उनको डांट कर खिलाने में। तो मदन मोहन जी को देखते हुए ये खड़े हो गए उधर ही और खिला पिला के हो गया। तो मैया आ गई भिक्षा देने के लिए। तो महाराज बोलते हैं, मैया ये ठाकुर जी की ऐसी सेवा नहीं करते कभी, बच्चे नियम से करनी चाहिए सेवा, क्योंकि वो स्वयं हरिभक्ति विलास के लेखक हैं, ऑथर ऑफ हरिभक्ति विलास, जिसमें पूरे विग्रह पूजा कैसे करनी चाहिए उसका पूरा वर्णन दिया है। तो मैया को, मैया तो वो तो सादगी भरी थी, वो साधुओं का सम्मान करने वाली थी। साधु ने कहा तो तुरंत, अरे हाँ, बोले आप डंडा दिखा तो ठाकुर जी को, उधर कांपते वो खाना खा रहे, ऐसा नहीं करते कभी, इस तरह से भक्त ठाकुर जी की सेवा नहीं होती। वो तुरंत हाँ हाँ करके उसने सब कुछ बंद करके पूरा बहुत ढंग से उन्होंने जो बताया वैसे करने लगी। इधर ठाकुर जी को बहुत बोर हो गया, उन्होंने कहा था मैया के साथ में डांट फटकार खाकर उसके पिलाड़ प्यार में, हाँ, लाड़ लड़ाते हुए, लड़ाने वाले लाड़ को लेते हुए रहना कितना आनंद था, और ये बाबा आ गए, उन्होंने पूरा नियम सिखा दिया, तब से मैया केवल मंत्र ही बोल रही है, डांटने वाटने का, प्रेम करने का नाम ही नहीं। तो ठाकुर जी सनातन गोस्वामी के स्वप्न में आए और उनको बताया, तुमने तो पूरा रस भंग कर दिया मेरा, पूरा कंप्लीट रस भंग कर दिया, मुझे अभी वहाँ रहने में कोई रुचि नहीं है, कल वापस वही उसी घर पे जाओ और भिक्षा मांगो, तो मैया जो है वो मुझे तुमको दान में दे देगी रोटी के साथ और मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। तो इनको बड़ा दुख होता है, अरे मैंने जाकर रस भंग कर लिया, अभी क्या करें, ठाकुर जी की आज्ञा है तो जाना पड़ेगा। उधर ठाकुर जी उस मैया के सपनों में भी आए और बताया, कल बाबा आएंगे, वो कल वाले, वो जब आएंगे तो मुझे रोटी के साथ में उनको भिक्षा में दे देना। तो मैया बहुत रोई, बहुत रोई, बहुत रोई, शायद ठाकुर जी डांट खा खा के परेशान हो गए, अभी जब उनको यहाँ पर रहने की इच्छा नहीं है, मैंने बहुत डांटा उनको, तो अच्छा नहीं किया मैंने, लेकिन ठाकुर जी की इच्छा है तो मैं क्या कर सकती हूँ। अगले दिन समय पर आए वो ठाकुर जी को उन्होंने सनातन गोस्वामी को दान कर दिया। अभी सनातन जी तो शुद्ध भक्त थे, तो रास्ते में ये सपने में तो बात किया ही था, रास्ते प्रत्यक्ष बात कर रहे हैं। तो सनातन जी उनको बता रहे हैं, देखो तो मेरे साथ रहोगे तो मैं तो हर 3 दिन में पेड़ बदलता हूँ, एक पेड़ के नीचे रहता नहीं हूँ मैं, और भिक्षा मांग के खाता हूँ, वो भी हफ्ते में एक बार, 10 दिन में एक बार मैं जाता हूँ मथुरा, वहाँ पर रोटी मांग के लाता हूँ, जमुना जी में भिगाता हूँ, गोली बनाता हूँ, आग्नि में भूनता हूँ, उसकी बाटी बना के खाता हूँ, मेरे पास कुछ मसाला वगैरह घी तेल कुछ है नहीं, देखो मुझसे फिर मांगना नहीं, कुछ मिठाई चाहिए, मक्खन चाहिए, घी चाहिए, कुछ मेरे पास है नहीं। नहीं, जहाँ पर भी रहोगे वहाँ रहूँगा, और जो भी खिलाओगे बड़े प्रेम से खाऊंगा, आराम से रहूंगा तुम्हारे साथ, ठीक है कोई बात नहीं। चालू हो गए, वृंदावन आ गए। और बहुत दिन तक वो, बहुत दिनों तक कभी कभी बाटी बनाते नहीं थे, कभी बनाते थे, और बहुत दिन बाटी खिलाई उनको, भोग लगाया पेड़ के नीचे। एक टील था वहाँ पर, जिसमें जब ही भगवान ने कालिया का मर्दन किया था ना जमुना जी के अंदर, तो ठंडे जल के वजह से, जमुना जी के ठंडे जल के अंदर बहुत देर रहने की वजह से ठाकुर जी को बहुत ठंड लगी थी, और कालिया का मर्दन करने के बाद, लीला समाप्त होने के बाद, वो इस टील पर चढ़ के आए थे, और वहाँ पर 12 सूर्यों ने आकर उनको गर्मी दी थी। और पहले कांप रहे थे, फिर वार्म हो गए, वार्म के बाद में पसीना आया, पसीना फिर बहा शरीर से उनसे, पसीना बहने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रस्कंदन, संस्कृत वर्ड है ये, प्रस्कंदन यानी पसीना आना। तो पहले ठंडे थे, फिर वार्म हो गए, उष्ण हो गए, फिर और ज़्यादा उष्ण हो गए, तो पसीना आया, पसीना आया तो पसीना इकट्ठा होके वो टील के नीचे एक सरोवर बना, उसका नाम पड़ा प्रस्कंदन सरोवर। वो अभी अभी 86 तक उसका थोड़ा थोड़ा सा चिन्ह था वहाँ पर, बाद में वो लुप्त हो गया। तो वो टील पर सनातन जी महाराज एक पेड़ के नीचे बैठकर मदन मोहन जी को रखते हुए बाटी खिलाते हुए भजन करते थे। तो मदन मोहन जी इतने लाड़ करते थे, प्यार करते थे मदन मोहन जी सनातन गोस्वामी के ऊपर, तो उन्होंने पहाड़ के ऊपर एक मुरली से कुआं खोदा, क्योंकि तो देखा महाराज जी तो दिन दिन तक भजन करते रहते, पानी भी नहीं पीते, नीचे उतरते ही नहीं है, ऊपर तो कोई व्यवस्था नहीं है। ठाकुर जी ने मुरली से पत्थर में कुआं बनाया। हम लोग कुआं कहाँ बनाते हैं, जमीन में, पानी कहाँ रहता है, जमीन में, थोड़ी पत्थर में पानी रहता है, लेकिन भगवान ने पत्थर में पानी पैदा किया। और आज भी कभी भी वो कुआं सूखता नहीं है। एक वहाँ का एक हमारा एक मुख्य कार्य होता है, जब वहाँ पर जाते हैं तो उस कुएं का पानी पीते हैं, बहुत मीठा और मधुर पानी है। वृंदावन में मदन मोहन जी का मंदिर जो है ना, उधर वो पीछे उनकी भजन कुटी है सनातन गोस्वामी की, उसके बाजू में वो कुआं है, और कुआं का ऊपर पंप लगा के अच्छी तरह से टाके वाके बना के रखी है, और वो कोई व्यक्ति आएगा आपको बाल्टी भर के पानी देगा, फर्स्ट क्लास पानी पियो पेट भर के, बहुत सुंदर मीठा पानी है। तो एक दिन मदन मोहन जी बोले, अरे सनातन जी कितने दिन वो बिना नमक की बाटी खिलाओगे, अभी मुझे भी कल 4 बाटी ला के दिया महाप्रसाद मदन मोहन जी का, ऐसा फर्स्ट क्लास घी में तला हुआ, हाँ नमक डाल के बढ़िया से, वो तो केवल गेहूं का आटा जमुना जी में भिगा के उसकी गोली बना के सीधे अग्नि में रखना है उसको, फायर में, और भूनना है उसको, बेकिंग, और वैसे ही भोग लगाना, कोई नमक नहीं, मिर्ची नहीं, तेल नहीं, तूप नहीं, कुछ नहीं। तो बोले कितने दिन बिना नमक का खिलाओगे, तो मैंने कहा था ना पहले, अभी नमक मांगोगे, कल मक्खन मांगोगे, मिठाई मांगोगे, मेरे पास कुछ साधन है, मैं कुछ नहीं, यहाँ पर मेरे पास तुमने वादा किया था कि आप मानेंगे। तो ठाकुर जी कहते हैं मैं मेरी व्यवस्था करूँ क्या अपने आप ही, हाँ करो कोई बात नहीं करो। तो ठाकुर जी ने लीला रचाई मदन मोहन जी ने, और एक तो रामचंद्र कपूर नाम का व्यापारी था, वो नमक का व्यापारी था, तो वो मुल्तान, अभी वो पाकिस्तान में है, पंजाब, उस समय पंजाब, वो पंजाब वो हिस्सा भारत में हुआ करता था, तो वो वहाँ से बोट भर के, बोट में क्या कहते हैं उसको, नमक डाल के निकला आगरा में, उसको बेचना था उसको। आगरा अच्छा शहर था उस समय भी, क्योंकि मुसलमानों का राज्य था उस समय, तो आगरा बहुत व्यवहार करने के लिए, व्यापार करने के लिए अच्छी जगह थी। तो वो मुल्तान से निकला और नदी नदी से निकला, एक नदी से चेंज करते दूसरी नदी में करते करते जमुना जी में नदी बोट लेते आया, और इधर आया जहाँ पर ये टील है वृंदावन में, आज की तारीख में वहाँ पर मदन मोहन जी का मंदिर है, वहाँ पर आया, तो वो तूफान में उसका जहाज फंस गया, तो कैसे भी उससे छलांग लगाई पानी में और स्विमिंग करके वो आया किनारे पे, और बोट वहाँ पर ऐसे डोल रही है इधर उधर, तो चिल्लाने लगा बचाओ बचाओ मेरी बोट डूब रही है, मेरी बोट डूब रही है। तो मदन मोहन जी प्रत्यक्ष होकर कुछ ग्वाल बालों के साथ उधर जमुना किनारे खेल रहे थे, तो बोलते हैं कि ऊपर पहाड़ पर साधु बैठे महाराज जी, वो बड़े सिद्ध महात्मा हैं, वो उनकी कृपा से आपका बोट बच जाएगा। तो ऊपर गए ढूंढते ढूंढते, क्या नाम है, सनातन जी नाम है उनका, तो ऊपर गए बाबा को मिले, तो बाबा कहते हैं दंडवत किया, तो उसके जेब में कुछ नमक की पुड़ियाँ थी, तो कुछ पुड़ी जो है वो जेब से ऐसे गिरी नीचे। वंदन किया, उन्होंने कहा ऐसे ऐसे बोट मेरा फंस गया है, तो बोले मदन मोहन जी जो है वही आपको बचाएंगे। उतने में नीचे मदन मोहन जी बालक रूप में जो खेल खेल रहे थे, ऐसा अपना ये उत्तर ये निकालते हैं, ऐसा गोल गोल घुमाते, क्या करते गोल घुमाने से, हवा की रुख बदलते हैं और उसको खींच लेते अपनी तरफ, तो अपने आप ही जहाज किनारे पे आ जाता है। जब ये नीचे उतरते हैं देखे तो किनारा पे जहाज आ गया, तूफान समाप्त हो गया है, तो बड़े खुश होते हैं। वापस आके सनातन जी को मिलते हैं कि आपको सर्वस्व अर्पण करना चाहता हूँ, ये तो बोट मेरी गई थी लेकिन अभी आपकी कृपा से आई है, तो सब आपका ही धन है, तो मैं आगरा जाता हूँ और उसको बेचता हूँ नमक को, और फिर जो भी धन मिलेगा इसका पूरा मैं आपको अर्पण कर देता हूँ। तो वहाँ से वो बोट लेकर आगरा गया है। अभी ये बात बहुत विशिष्ट लोगों को पता है, बहुत लोगों को पता नहीं है कि वो जो नमक का बोट लेकर वो आगरा गया ना, तो आगरा में वो नमक का रूपांतर कपूर में हो गया, सारा नमक कपूर में रूपांतरित हो गया मदन मोहन जी की कृपा से। क्यों हुआ ऐसे? क्योंकि वो नमक बेचने के पहले ही उसे वादा किया था कि सारा पैसा भगवान को दूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। हमारा जो अर्थ फोरम है ना, अर्थ फोरम, उसका भी रहस्य यही है कि अपने बिजनेस में ठाकुर जी को 50% का पार्टनर बनाओ और एक्चुअली अपना प्रॉफिट 50% ठाकुर जी को दो, तो आपने आधा ठाकुर जी को दिया, आपका बिजनेस 10 गुना बढ़ेगा। मतलब ठाकुर जी को आपने 10 गुना बढ़ने के बाद में 5 गुना देंगे ना, तो आपका भी 5 गुना हो गया ना, आपके पास एक ही मतलब ओनली वन टाइम मनी था। समझो आपके पास 10 रुपये थे और आपने 50% ठाकुर जी को देने का प्लानिंग किया, तो आप कितना रुपये देंगे ठाकुर जी को? 5 रुपये देंगे। ठाकुर जी आपका बिजनेस 100 रुपये का कर देंगे, ठाकुर जी को कितना देंगे? 50 रुपया। और आपके पास कितना हो गया? 50 रुपया। 5 रुपया था, आपका पे 50 हो गया, ठाकुर जी 50 मिला। तो इसको कहते हैं विन विन सिचुएशन। और आपने खुद का ही बिजनेस रखा तो आपको उतना ही प्रॉफिट मिलेगा, बढ़ेगा नहीं कुछ। तो ठाकुर जी ने वो रिस्पांस कैसे दिया, जब उसने पहले ही वादा किया था कि सारा नमक बेचकर मैं आपको अर्पण करूंगा, तो नमक का रूपांतर ठाकुर जी ने कपूर को कर दिया। और आप जानते हैं ना नमक का भाव और कपूर का भाव क्या होता है। भीमसेनी कपूर का भाव आज भी 2500 रुपया किलो है और नमक कितना रुपये किलो है? 50 रुपीस मैक्सिमम। तो 50 रुपया किलो वाला माल उन्होंने 2500 रुपये किलो वाला बना दिया। एक मैं अंदाज दे रहा हूँ आपको कितना गुना बढ़ा दिया उनको, तो उतना ज़्यादा पैसा उसने कमाया और वो सारा आके उन्हें मदन मोहन जी के चरणों में दे दिया। तो सनातन जी कहते हैं कि अरे मैं तो सन्यासी हूँ, मेरे लिए कोई ज़रूरत नहीं महल की, मैं झोपड़ी में भी अच्छा हूँ। मदन मोहन जी ऐसे पेड़ के नीचे रह रहे हैं तो मदन मोहन जी के लिए मंदिर बनाऊँ। तो रामचंद्र कपूर ने फिर वो मंदिर बनाया जो आज आपको दिखाई पड़ रहा है, जो सेम टू सेम यहाँ पर हमारे लिए उपलब्ध है, हाँ, गोवर्धन इको विलेज में सेम टू सेम एग्जैक्ट रेप्लिका है वो, एग्जैक्ट प्रतिकृति स्टेम, और नया है बिल्कुल चमकदार, बहुत प्रेम से उसमें सेवा हो रही है। और आज उसके अंदर फिर क्या हुआ, मदन मोहन जी की जब स्थापना हुई तब तक सनातन गोस्वामी दुनिया से पधार चुके थे, उनके सामने प्रतिष्ठापना नहीं हुई मदन मोहन जी की। ऑफकोर्स मदन मोहन जी की प्रतिष्ठापना नहीं हुई क्योंकि मदन मोहन जी साक्षात वज्रनाभ के द्वारा ही प्रतिष्ठापित थे, तो जब उनको रखने का समय आया तभी गोस्वामी जी महाराज ऑलरेडी जा चुके थे। उनके शिष्य थे श्री कृष्णदास ब्रह्मचारी, उनको सौंप कर ये कंस्ट्रक्शन जब हो रहा था तभी यही हमारे सनातन गोस्वामी भ्रमण के लिए गए। बहुत समय तक पावन सरोवर के किनारे पे रहे, अपने भजन कुटी में रहे, वहाँ पर भी वो ध्यान खोकर 3-3 दिन तक बिना पानी पिए भजन करते थे एकदम मग्न होकर। तो उनको मदन मोहन जी बालक रूप में आकर उनको दूध पिलाया उन्होंने। उन्होंने कहा महाराज जी मैंने यहाँ से सुना है कि आप भिक्षा नहीं करते, 3-3 दिन तक भूखे रहते हो, तो जो लोग भिक्षा नहीं करते उनको मैं खुद आके दूध देता हूँ। तो बोले किसने बताया आपको? यहाँ पर पावन सरोवर पे जो माताएं आती है ना कपड़ा धोने के लिए, रोज देखती है आपको भजन करते हैं, बाहर निकलते हुए देखा नहीं आपको, ये दूध पीजिए और बाद में आता हूँ मैं मटका लेने के लिए। दूध उन्होंने पिया तो उनके शरीर में रोमांच खड़े हो गए, आंखों से अश्रु आए और उनको पता चला कि ये साधारण बालक नहीं है, तो ढूंढने लगे उसको पात्र वापस देने के लिए, लेकिन ठाकुर जी मिले ही नहीं उनको। उसके बाद में वो चक्रेश्वर महादेव के पास आए और वहाँ पर बाकी का समय बिताया उन्होंने, और मदन मोहन जी उनके जाने के पश्चात 1680 में वहाँ पर स्थापन, 1760 में शायद स्थापन हो गए, 1760 में। वह कहते हैं कि 100 साल तक वो बहुत इत्मीनान से वहाँ रहे, और फिर अगले सेंचुरी में जब औरंगजेब आया तो फिर उसका आक्रमण शुरू हुआ। तो ये हुई संक्षेप में मदन मोहन जी की कहानी। दूसरे है गोविंद जी। तो गोविंद जी भी वज्रनाभ ने बनाए थे, और वज्रनाभ ने जब इसको बनाए तो वापस उत्तरा को दिखाया, तो उत्तरा ने कहा कि इनका जो गोविंद जी का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन ऐसा है कि गोपीनाथ जी की मूर्ति का वक्षस्थल कृष्ण के जैसा है, और गोविंद जी का मुख कमल कृष्ण जैसा है। थोड़ा इसमें कन्फ्यूजन था बहुत साल तक, लेकिन अभी कन्फर्म किया तो गोविंद जी का मुख जो है वो कृष्ण के समान है। तो दूसरी मूर्ति बनाई तो उन्होंने कहा कि इसके जो वक्षस्थल है वो साक्षात इस मूर्ति की तरह है, तो उनको गोपीनाथ जी के रूप में प्रस्थापित किया गया। और तीसरी मूर्ति बनाई तो उन्होंने कहा कि इनका मुख कमल जो है वो साक्षात कृष्ण जैसा है, तो वो गोविंद जी बने। तो यथावकाश मदननाथ ने तीनों को स्थापन किया, मदन मोहन जी, गोविंद जी, गोपीनाथ जी, लेकिन तीनों लुप्त हो गए। फिर 400-450 साल के बाद में जब ही मधु पंडित वृंदावन में आए, मधु पंडित भगवान के बहुत प्रेमी भक्त थे और हमेशा भाव विभोर अवस्था में रहते थे, हमेशा कभी दुनियादारी के बाहरी चेतना में रहे नहीं वो। तो कोथाए कृष्णा करके पूरे वृंदावन में घूमते थे, भगवान को ढूंढते ढूंढते फिरते थे। तो एक दिन भगवान को पुकारते पुकारते ढूंढते ढूंढते वो बंसीवट के पास गए, और बंसीवट के पास में चलते रहे, चलते जमुना जी में ही प्रवेश करते गए, मतलब पूछते पूछते गए तो सीधा जमुना जी में ही कूद गए और डूबने लगे, फिर भी पुकार रहे कोथाए कृष्णा कोथाए कृष्णा। तो उनका भाव देखकर गोपीनाथ जी स्वयं प्रकट हो गए यमुना जी के जल के अंदर, और उनको पकड़ा उन्होंने और बाहर लेके आए बेहोश गोपीनाथ जी मधु पंडित जी को। फिर मधु पंडित जी होश में आए और साक्षात गोपीनाथ का दर्शन किया, तो बड़े भाव विभोर हो गए वो। तो गोपीनाथ ने कहा, अभी साक्षात मूर्ति नहीं है वो, प्रत्यक्ष है गोपीनाथ। तो गोपीनाथ जी ने कहा, क्या सेवा करूँ आपकी, क्या आपकी इच्छा है, वरदान मांगो। तो मधु पंडित ने कहा कि आप मूर्ति बनकर यहीं रहो और मैं भी यहीं रहूँगा और आपकी सेवा करूँगा। तो वो प्रत्यक्ष गोपीनाथ जो है मूर्ति बन गए, और कहते 40 साल तक मधु पंडित ने उनकी सेवा की। उसके बाद मधु पंडित का देहांत हो गया, मधु पंडित की समाधि भी उसी मंदिर के कोर्टयार्ड में है। तो ऐसे तरह से गोपीनाथ जी प्रकट हो गए। फिर अब बारी आती है गोविंद जी की। तो तब तक रूप गोस्वामी वृंदावन में आ गए थे सनातन गोस्वामी के साथ, और रूप गोस्वामी सब जगह गोविंद जी को ढूंढ रहे थे कि वृंदावन में सबको पता है ना कहानी, वज्रनाभ ने स्थापन किया है, तो गोविंद जी उनके इष्ट थे, तो गोविंद जी को सब जगह ढूंढ रहे हैं। हर घर में जाके ढूंढा उन्होंने, ब्रजवासियों को इंक्वायरी किया, पूछताछ किया, सब जगह जाके गोविंद जी के बारे में पूछा, कोई बता नहीं पाया, किसी को जानकारी भी नहीं कि गोविंद जी यहाँ थे और यहाँ होने चाहिए। और एक दिन अद्भुत खबर उनके पास में आई कि एक गाय जो है, उधर भी एक टील था, ये इधर टील था ना मदन मोहन जी का, ऐसा और एक टील उधर भी है जहाँ पर गोविंद जी का आज का मंदिर है, वो भी जमीन के ऐसे ऊपर है कुछ देर, कुछ समय के लिए ऊपर है, बहुत पहाड़ नहीं है, लेकिन उसको कहते हैं टील यानी हिलॉक, छोटा सा पर्वत, उस पर बैठ, उसके आसपास बैठ के वो भजन करते थे। तो किसी ने कहा कि वहाँ पर एक रोज गाय आती है टील के ऊपर, एकदम ऊपर आती है और अपना चारों थनों से दूध सूरा खाली कर देती, और वो जो ग्वाला ग्वाला है उसका, वो गैया चराने को आता है और ये अचानक बीच में गैया गायब होती है और आती है तब थन कर खाली करके आती है, जब घर में दूध निकालने का समय आता है नो मिल्क। तो एक दिन वो पीछे पीछे गया कि क्या राज क्या है इसका, सब गैया रात शाम को दूध देती है आने के बाद और ये गैया खाली आती है पूरी। तो एक दिन पीछे पीछे एकदम पूरा पॉइंट टू पॉइंट पीछे गए, तो ये गाय चढ़ गई पर्वत पर छोटे से, उसके पीछे पीछे गया तो देखे पर्वत के टॉप पर जाके खड़ी होके चारों थनों में से बिना दोहे पूरा धार बह रही है, पूरा खाली कर दिया उसने अपना। तब वो क्या कहते ना उसको, कुल्हाड़ी लेकर उसको ऐसे ही उधर ही मारने गया। तब ब्रजवासी ने उनको रोका और ये खबर रूप गोस्वामी के पास आई, तो उनको बड़ा आश्चर्य लगा कि बड़ी अद्भुत बात है, ये कुछ रहस्य है इसके पीछे। तो उसी रात को रूप गोस्वामी को स्वप्न आया और गोविंद जी प्रकट हो गए और गोविंद जी ने कहा तुमने जो कहानी सुनी आज की वो मैं ही हूँ पत्थर के नीचे, और गैया सुर भी गैया है, वो मुझे रोज़ दूध पिला के जाती है, मैं इस पत्थर के नीचे हूँ और बहुत गर्मी में हूँ और बहुत तड़प रहा हूँ, मुझे आप ब्रजवासियों की सहायता से बाहर निकलो और सेवा में रखो, दस सेवा मैं आपकी लूँगा। तो रूप गोस्वामी फिर ये स्वप्न को लोगों को बताते हैं, बड़े सिद्ध महात्मा थे, सब लोगों के लोग बात को मानते हैं, और बड़ी कोमलता से वो खोदन करके खुदाई करके ठाकुर जी का सुंदर विग्रह प्रकट हो जाता है गोविंद जी का, और वही उसका भजन करना आरंभ करते थे। कुछ समय बाद में रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को रूप गोस्वामी जी इस मूर्ति की सेवा करने का काम देते हैं, उसके पहले स्वयं सेवा करते हैं वहीं पर, वहाँ उस जगह को कहा गया योगपीठ, तो योगपीठ के बाद में बहुत सुंदर वृक्ष भी हुआ करते थे, वहीं पर रहकर उनकी सेवा की। फिर रघुनाथ भट्ट जी आए, और रघुनाथ भट्ट जी तपन मिश्रा के पुत्र थे वाराणसी के, और श्रीमद् भागवत को 6 अलग अलग तानों में गाते थे वो, इन 6 डिफरेंट ट्यून्स, और उनका श्रीमद् भागवत सुनने के लिए दूर दूर से विद्यार्थी आते थे, तो वो उसके पुजारी बने। तो वो बहुत उन्होंने प्रचार किया बैठे बैठे वहाँ पर, तो अकबर का जो सेनापति था मान सिंह वो उनका शिष्य बना। एक दिन वो अपने गुरु से मिलने आया और कहा कि मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ, सेवा करना चाहता हूँ। तो रघुनाथ भट्ट जी ने कहा कि मेरे लिए कुछ मत करो, आप गोविंद जी के लिए मंदिर बनाओ। तो मान सिंह ने अपने धन से राजा से परमिशन लेकर 7 मंजिल का लाल पत्थर का मंदिर बनाया, और हर एक एक पिलर पे भगवान के लीलाओं को बनाया पत्थर में, 7 मंजिल का मंदिर बनाया, गोविंद जी को स्थापन किया उधर। तब ये मंदिर बनने लगा तो फिर रूप गोस्वामी टेर कदम चले गए, और टेर कदम पे वहाँ पर भजन करना आरंभ किया। राधा रानी ने उनको दर्शन दिया एक दिन, और अपने हाथ से खीर बनाकर खिलाया उनको और सनातन गोस्वामी को। इस तरह से गोविंद जी का निर्माण हुआ। मैं चलो आपको संक्षेप बता रहा हूँ। तो ये 3 प्रमुख विग्रह जो वज्रनाभ के द्वारा बनाए गए थे श्री कृष्ण के जाने के बाद, तुरंत उनका निर्माण हुआ था, ये 3 विग्रह हैं। फिर जब भी सनातन गोस्वामी भी इस दुनिया में थे, चैतन्य महाप्रभु भी थे, वल्लभाचार्य भी थे, उस समय भगवान के बंसी का अवतार हुआ, उनका नाम है श्री हित हरिवंश, हरि यानी भगवान, वंश यानी बंसी मुरली, तो श्री हित ही उनकी पदवी है, हमारे कैसे श्रील प्रभुपाद, वैसे श्री हित, हित यानी हित हरिवंश, श्री हित उनका पदवी है। तो ये जो हरिवंश जी है ये मध्य प्रदेश में कहीं उनका जन्म हुआ था, और वृंदावन में एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे, बड़े शिव जी के बड़े भक्त थे वो, लेकिन शिव जी की भक्ति आमतौर पर लोग कुछ पाने के लिए करते हैं, लेकिन ये निरपेक्ष भावना से शिव जी की भक्ति करते थे। तो शिव जी प्रसन्न हो गए, उनके स्वप्न में आए और उनको बोला कि हम बड़े प्रसन्न हैं आपसे, आप हमसे वरदान मांगिए। तो आत्मदेव कहते हैं कि मैंने किसी वरदान के लिए आपका भजन नहीं किया था, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं आपका अनन्य भक्त हूँ और आपने दर्शन दिया यही मेरे प्रसाद है, मैं कुछ नहीं चाहता। तो कहते नहीं नहीं, हमारा दर्शन कभी देवताओं का खाली जाता नहीं है, आपको कुछ ना कुछ लेना ही पड़ेगा। तो आत्मदेव को फिर भी इच्छा नहीं थी कुछ लेने की, लेकिन वो देखते हैं कि मेरे इष्ट शिव जी को प्रसन्न करने के लिए अगर मैं उनकी इच्छा मान लूँगा तो प्रसन्न हो जाएंगे, ये उनको पता चलता है कि मैं कुछ मांगूंगा तो मेरे इष्ट को आनंद होगा, प्रसन्न हो जाएंगे वो, इसलिए उन्होंने सोचा कुछ मांगना चाहिए। तो उन्होंने एक बार सोच कर मांगा, स्वप्न में चल रहा है सब कुछ, ये सोचकर मांगा कि आपका जो सर्वोत्तम प्रिय वस्तु है वो मुझे दे दो आप। तो शिव जी आनंद से नृत्य करने लगे कि ऐसा आज तक मेरे किसी भक्त ने मेरे से मांगा नहीं कुछ। हर व्यक्ति आता है तो पैसे मांगता है, पत्नी मांगता है, पति मांगता है, धन मांगता है, ऐश्वर्य मांगता है, कोई व्यक्ति ऐसा निरपेक्ष मिला ही नहीं, और निरपेक्ष मिला वो भी मेरे इष्ट को मांग रहा है मुझसे। तो बड़े खुश होकर बोले कि तुम सुबह जल्दी उठो, अपने कुएं में सीढ़ी से नीचे उतरो, वहाँ एक सुरंग मिलेगा, उसके अंदर चले जाओ, उसके एंड में आपको मेरे सबसे प्रिय वस्तु मिलेगी। तो वैसे उठते वो बीच रात में, फटाफट बीच रात में स्नान करते हैं, कुएं में उतरते हैं, सुरंग में चले जाते, तो सुरंग के कोने में एंड में उनको राधा वल्लभ जी की मूर्ति प्राप्त होती है जो शिव जी के इष्ट हैं। तो राधा वल्लभ जी की फिर वो सेवा करने लगते हैं और बहुत साल सेवा करते हैं। उसके बाद में उधर मध्य प्रदेश में बंसी का अवतार होता है, तो वो युवा अवस्था में आते हैं, उनके 2 विवाह होते हैं, और यहाँ पर ये भी थोड़े से बुजुर्ग हो जाते हैं। तो एक दिन ठाकुर जी राधा वल्लभ जी स्वप्नों में आते हैं इनके, आत्मदेव के, और कहते हैं कि मेरे बंसी का अवतार हुआ है। अभी वो कुछ ही दिन में हरिवंश जी गोस्वामी जी अभी वृंदावन में आने वाले हैं, तो तब जब आपकी मुलाकात होगी उनसे तो आपकी कन्या विवाह में और मुझे दहेज में दे देना। उधर हरिवंश जी को प्रेरणा देते हैं, तो भी छोड़ो अपना घर और वृंदावन में जाओ, और वृंदावन में आपको आत्मदेव ब्राह्मण की मुलाकात होगी और वो मुझे आपको भेंट देंगे और उसकी कन्या भी देंगे, उससे विवाह कर लेना और मुझे स्वीकार कर लेना, मेरी सेवा करना। तो अपने परिवार को छोड़ते हैं और सीधे वृंदावन में आते हैं। और हमारा जो हॉस्पिस है ना, आपने कितने लोगों ने देखा है हमारा हॉस्पिस, उसके बाजू में ये स्थान है, बिल्कुल एक मिनट के अंतर पे, वहीं पर रुक जाते हैं। और वहीं एक दिन उनकी आत्मदेव ब्राह्मण से मुलाकात होती है। अभी अगर हमको अगर उसको जैसा मैसेज आता तो फोटो आ जाता। हाँ, जब हम अमेरिका प्रभुपाद जी गए थे तो शैली अग्रवाल गोपाल वगैरह फोटो नहीं आया था कि भाई ये व्यक्ति आपको लेने आएगा, इसका आदमी आएगा, आईडी कार्ड होगा, कुछ नहीं। लेकिन ये हृदय की भावना ऐसी होती है कि ना हित हरिवंश जी को पता था कि आत्मदेव का चेहरा कैसा है, ना आत्मदेव को पता था कि हित हरिवंश कौन है। लेकिन जैसे दोनों का मिलन हुआ, दोनों समझ गए कि ये वही है जिसका उल्लेख राधा वल्लभ ने सपने में आकर किया था। और जब देखते हैं दूसरे को, ऐसा गले मिलते हैं, ऐसे गले मिलते हैं, और अश्रुओं की नदियां, प्रेम की अश्रुओं की नदियां बहाते हैं, दोनों का स्नान होता है अश्रु में, फिर संभल जाते हैं। फिर आत्मदेव अपने कन्या को ठाकुर जी को लेकर आते हैं और वही विवाह कर देते हैं और ठाकुर जी को दे देते हैं उनको। ठाकुर जी अपने विवाह करके अपनी पत्नी को मध्य प्रदेश भेज देते हैं, कौन, हित हरिवंश जी। और वहीं ठाकुर जी को लेकर एक बट का वृक्ष है, था उस समय, और हमारे बचपन में गांव में भी हमने देखा हुआ है कि बट का वृक्ष वो होता था, हुआ करते थे, उसमें ऐसे होल्स हुआ करते थे, ढोली कहते, ढोली मतलब कमरे हुआ करते थे, अंदर खाली जगह, एक आदमी मेरे जैसा खड़ा हो सकता है, बैठ सकता है, सो सकता है। तो साधु लोग हमेशा पुराने ज़माने में पेड़ के गड्ढे के अंदर रहा करते थे, एकांत भी था अच्छी तरह से और एक तरफ से खुला भी रहता था। तो ये जो पेड़ था इसके अंदर तीन गड्ढे थे, जैसे कि ट्रिप्लेक्स हाउस, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर। तो ये ग्राउंड फ्लोर पे खुद रहते थे, अपना भजन करते थे, फर्स्ट फ्लोर पर ठाकुर जी को रखा था और सेकेंड फ्लोर पर पूरा ठाकुर जी का सामान, पूरा अलंकार वलंकार रखा था। ऐसा अद्भुत घर में वो रहते थे, प्राकृतिक, और ठाकुर जी भी बहुत दिन रहे उसके अंदर। फिर एक नरवान डाकू आया, क्योंकि हित हरिवंश के आने के बाद में क्या हुआ, मैंने आपको पहले भी कहा था कि साधु जब आते हैं ना तो उनके होने से सारे जो जानवर पंछी प्राणी जो है, जो एक दूसरे के शत्रु है, वो मित्र बन जाते हैं, शत्रुता खत्म हो जाती है, द्वेष हिंसा सब ईर्ष्या समाप्त हो जाती है। तो इनके आने से ऐसा ही हुआ, उनके आसपास कोई आश्रम नहीं था उनका, लेकिन जो भी जंगल था उसके आसपास शेर हाथी हिरण सब लोग आके रहने लगे, बिल्कुल गले मिलने लगे, कोई शत्रुता नहीं, कुछ नहीं। तो इनकी प्रसिद्धि बढ़ गई, अरे वृंदावन में कोई साधु आया जो सब हिंस प्राणियों को लेकर रहता है, कोई हिंसा होती नहीं उधर। तो उधर डाकू था नरवाहन नाम का, नरवाहन नाम का डाकू था, पूरा इतना खूंखार था वो, बड़ा शक्तिशाली था। तो पूरा वृंदावन का जमीन उसने हड़प लिया था, मतलब पूरे वृंदावन का राजा था वो, चोरी चपेटी करके लपेटा हुआ जो धन भूमि थी, तो पूरा वृंदावन का राजा था वो। और थोड़े से बाहर उसका रहने की जगह थी, तो उसके कान में ये बात आई कि मुझे, मतलब मैं प्रसिद्ध हूँ यहाँ पर, लेकिन मुझसे ज़्यादा प्रसिद्ध ये साधु हो रहा है। तो उसको सहन नहीं हुआ, मतलब साधु को मिटा के आता हूँ, मुझसे ज़्यादा प्रसिद्ध कोई होना नहीं चाहिए, नोबडी शुड बिकम मोर फेमस देन मी। तो वो घोड़े पर बैठ के तलवार लेके आया, पूरा राजमुकुट पहन के, पूरा सरदार, राजों का वो क्या कहते हैं उसको, डाकुओं का राजा था ना वो, बकायदा राजा था, सिंहासन पे बैठा हुआ। तो राजमुकुट और घोड़ा तलवार लेकर पूरा खड़ाऊ पहनकर अलंकार पहनकर निकला, गर्मी का समय था। तो कुछ समय बाद में उसको लगा, अरे एक यक कष्टी साधु को मारने के लिए इतना सब घोड़ा वोड़ा लेकर तैयार गया, घोड़ा छोड़ दिया, उतर गया जमीन पे, जमुना किनारा आया। तो खड़ा हो पहना था ना उसने, क्या उसको कहते हैं, मोजड़ी, मोजड़ी कहना, राजा की मोजड़ी। तो सब मोजड़ी में रेती आने लगी,
उसको डिस्टर्ब होने लगा तो मोजरी को फेंक दिया उसने। तो कुछ बाद थोड़ा गर्मी होने लगी तो मुकुट को उतार के फेंक दिया। और ज़्यादा गर्मी होने लगी तो सब अलंकार सब निकाल दिए, कपड़े भी सब उतार दिए, धोती उतार दिया, सब उतार दिया। वैसे पूरा त्वेष में चल रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा क्या कर रहा है वो। लेकिन एक्चुअली क्या हो रहा है, साधु के प्रभाव क्षेत्र में वो प्रवेश कर रहा है। तो बिना जाने हुए सब त्याग दे रहा है वो, अपना राजदंड, राजकिलक, राजमाला, अलंकार सब छोड़ के। एंड में उसको पता ही नहीं चला कि केवल लंगोटी में रह गया वो, फिर भी लेफ्ट राइट करके आ रहा है। कहाँ है वो हरिवंश? तो पहुंच गया जहाँ हमारा ऑस्पिस है, उसके बाजू में जमुना किनारे। और पूछ रहा है कौन है हरिवंश, कौन है हरिवंश, कौन है? तो महाराज जी वहाँ भजन कर रहे थे। तो बोला मैं ही हूँ। उसको लाल आंखों से घूर कर देखने लगा तो हरिवंश जी कहते हैं, अरे नरवाहन प्रभु निहार, मुझे क्यों देख रहा है, प्रभु को देख। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, इसको नाम कैसे पता मेरा। फिर भी उसने उसके कहने के अनुसार ऐसे ऑटोमेटिकली भगवान की ओर देखा। और जैसे ही भगवान को देखा, राधा वल्लभ जी को, उनका सुंदर स्वरूप देखकर उसका सारा क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, मत्सर सब पिघल गया। तत्क्षण है ये, ऐसा नहीं कि चार दिन लगे, दो दिन के बाद में रोग क्रोध खत्म हुआ, चार दिन के बाद में ईर्ष्या खत्म हुई, पांचवें दिन सिर हो गया, ऐसा नहीं। उसी क्षण सब पिघल गया और उसी क्षण उसके मन में प्रेम जागृत हो गया भगवान के लिए। ये साधु की कृपा है। चैतन्य महाप्रभु ने जैसे ही मदाई को गले लगाया तो क्या हुआ, एक ही क्षण में सारे पाप खत्म हो गए, एक ही क्षण में आप प्रेम भक्ति हृदय में स्थापित हो गई, दूसरे क्षण में आंखों से आंसू बहने लगे ऑन द स्पॉट। ऐसा नहीं अधो श्रद्धा तथा साधु संगत था भजन क्रिया, ऐसा स्टेप वाइज काम नहीं हुआ कुछ उनका। ऑन द स्पॉट प्रेम प्राप्ति, ऑन द स्पॉट अनर्थ निवृत्ति, पाप निवृत्ति, सब पाप भगवान के शरीर में और इसके आंखों में आंसू। वैसे ही एक ही क्षण में साधु के एक वाणी से प्रभु निहार, मुझे क्यों निहार रहा है, और प्रभु को निहारते ही सब कुछ परिवर्तन हो गया। सीधे लंगोटी में आया था, पहले विरक्त हो चुका था, बिना जाने दंडवत प्रणाम किया रेती में साधु के महाराज के चरणों में। बोले महाराज जी क्षमा कर रहा, मैं आपको मारने के लिए आया था, मैं आपके चरणों में रहना चाहता हूँ। तो वहीं पर दीक्षा दे दिया, उसको मंत्र दीक्षा दे दिया और वही रहने लगा वो। उसके बाद वो बड़ा अच्छा भक्त बना, उसका भक्तमाल में भी कथा आती है नरवाण डाकू की। उसने एक दिन एक बाण मारा वहाँ खड़ा होकर, बोले महाराज ये बाण जहाँ तक जाएगा सब भूमि आपको दान करना चाहता हूँ, ये सब चोरी चपेटी की भूमि है, अभी आपके सेवा में देना चाहता हूँ। तो बाण मारा तो पूरा वृंदावन को व्याप्त करके बाण जमुना के पार गया जहाँ पर वो मानसरोवर है। इसलिए मानसरोवर और वहाँ पर जो राधा रानी का विग्रह है वो सारी जगह राधा वल्लभ जी के नियंत्रण में है, उनकी सेवा चलती है वहाँ पर, मानसरोवर भी उनकी सेवा में है। फिर नरवाहन जी, वो राधा वल्लभ जी जो है वो उनका मंदिर बनाया गया जो जुगल घाट पे है। जुगल घाट में जुगल किशोर जी का मंदिर है, उसके आगे जाएंगे तो राधा वल्लभ जी का मंदिर है, बाकी बेर थोड़ा आगे है। और उसके बाद में अंग्रेजों का अपना मुसलमानों का हमला हुआ, उसके बाद में वो मंदिर जो है वो भ्रष्ट हो गया, इसलिए आज जो मंदिर में रहते हैं वो नया मंदिर बना हुआ है। उसके पीछे एक मंदिर है, वहाँ पर हित हरिवंश महाराज जी की मूर्ति भगवान के जगह पर रखी गई है, और उसके बाजू में नया मंदिर बना, अभी राधा वल्लभ जी वहाँ विराजमान है। तो ये हुई राधा वल्लभ जी की कथा, बताने को तो बहुत दिल कर रहा है मुझे राधा वल्लभ जी। अभी तीसरे ठाकुर जी बहुत सबसे महत्वपूर्ण है, वो बांके बिहारी जी, उनको प्रेम से बिहारी जी कहते हैं और बिहारी जी को वृंदावन का राजा मानते हैं। तो बिहारी जी का ऐसा हुआ कि एक ललिता सखी के अवतार हुए स्वामी हरिदास, और स्वामी हरिदास जी निधिवन में भजन किया करते थे, ऐसा कठोर भजन करते थे वो। उनकी एक विशेषता थी कि वो संगीत में बड़े श्रेष्ठ कलाकार थे। आज भी स्वामी हरिदास के नाम से भारत में संगीत की कई संगठनाएं हैं और उनके नाम से कई प्रतियोगिता आज भी होती है। हमारे रमेश बाबा जी ना, वो स्वामी हरिदास संगीत गोष्ठी में गए थे एक बार कंपटीशन में और गोल्ड मेडल लेकर आए थे, उम्र की 12 वर्ष के आयु में। 12 वर्ष के आयु में स्वामी हरिदास संगीत प्रतियोगिता में गाने के लिए गए थे, दिल्ली में रहे थे एक घर पे, उधर भी चमत्कार हुआ था उस घर पे। तो ऐसे स्वामी हरिदास जी वृंदावन में आकर निधि वन में एक झोपड़ी में रहते थे, और झोपड़ी कैसी थी, सांप की तरह आप जाएंगे तो ही आप जा सकते हैं अंदर उसके, बैठ के जा सकते नहीं, आपको पूरा पेट के बल पे ऐसा घसीटना पड़ेगा अपने आप को, सांप की तरह या मगरमच्छ की तरह तो जा सकते हैं, ऐसी झोपड़ी थी उनकी अद्भुत। और उनकी और एक विशेषता थी कि उनका शरीर ना भगवान जैसे ही था, उनकी भुजाएं घुटने तक लंबी थी, अजानुबाहु कहते उसको, ऐसे दिव्य लक्षण उनके शरीर में थे। और ऐसे एकांत में रेती के, उस समय पूरा वृंदावन ना पूरा जंगल या रेती, यमुना किनारा था पूरा, तो रेती में ही ये निधिवन था, आज भी वही है, बहुत बिल्डिंगें आगे बीच में, लेकिन यमुना किनारे पे ये सब कुछ। तो एक दिन उनके आंखों के सामने भजन करते करते ठाकुर जी बांके बिहारी प्रकट हो गए स्वयं, अराउंड 550 ईयर्स अगो। तो बांके बिहारी जी को दर्शन, बांके बिहारी ने दर्शन दिया, ठाकुर जी ने कहा मेरे साथ ही रहो, तो वहीं पर निधिवन के पास में उनको स्थापन किया गया। और फिर एक बार अकबर जी वहां पर आए, और वो थे ना तानसेन, अकबर के दरबार में नवरत्नों में से एक थे, वो संगीत के बड़े माहिर थे, वो मल्हार गाकर वो बारिश किया करते थे, ऐसे बहुत जबरदस्त थे तानसेन। तो तानसेन जी के गुरु थे ये, तानसेन जी उनके शिष्य थे। तो अकबर जी के साथ तानसेन अपने गुरु का बड़ा गौरव करते थे कि हमारे गुरु जी, क्योंकि तानसेन बड़े अद्भुत खुद थे, तो जब भी वो अपने गुरु की तारीफ करते थे तो वो बोलते थे अरे आपके गुरु जी तो आपसे कितने महान होंगे, हमें दर्शन कराओ उनके। तो अरे हमारे गुरु जी वृंदावन के बाहर नहीं निकलते हैं, और आप लोग आगरा में रहते हो तो आपको वृंदावन आना पड़ेगा। तो एक बार अकबर जी को लेकर तानसेन वृंदावन आए और निधिवन में लेके गए, और खुद सांप बनकर झोपड़ी में प्रवेश किया उन्होंने, गुरु जी को प्रणाम किया, बोले गुरु महाराज जी हमारे सम्राट आए आपको मिलने के लिए, आपके मिलने की इच्छा रखते हैं। बोले क्यों लेके आए उनको, मुझे उनसे क्या काम है, मैं राजा वजह से मिलना नहीं चाहता, मुझे कोई काम नहीं, धन संपत्ति और स्त्रियां और अनुयायी और सब कुछ अधिकार रखने वाले के पास मेरा कोई काम नहीं। उसको बोले चले जाओ। तो वापस सांप बन के बाहर आए और महाराज खड़े बाहर, बोले महाराज हमारे महाराज आपको मिलना नहीं चाहते। आप सोच सकते हैं, समझे प्रधानमंत्री आपके घर घर पे आए और आपको अंदर मैसेज आता है किचन में कि प्रधानमंत्री आपको मिलना चाहते हैं, आप अपने पति को बोलते हैं उनको मुझे मिलना नहीं, उसको बोलो चले जाओ, तो क्या लगेगा प्रधानमंत्री को, अरे मैं देश का राजा हूँ, तो वैसे मैं चक्रवर्ती सम्राट हूँ, सम्राट अकबर हूँ, और ये महाराज जी मुझे मिलना नहीं चाहते। तो और उत्कंठा बड़ी उनकी महाराज को मिलने के लिए, अरे ऐसे विभूति है कि मुझे भी मिलना नहीं चाहते। तो फिर वो अंदर गए, बोले महाराज जी बहुत तड़प रहे हैं आपको मिलने के लिए। तो सांप बन के गए, सांप बन के बाहर आए, तो बोले ले आओ। अकबर भी सांप बन के अंदर गया और महाराज का दर्शन करके बड़ा धन्य हो गया वो, बड़े अद्भुत बाबा ये इतने निरीक्ष हैं, निरपेक्ष हैं कि मुझे भी मिलने की इच्छा नहीं है। तो कहते महाराज जी मैं कुछ सेवा करना चाहता हूँ आपकी। तो महाराज जी उनको कहते अरे अरे महाराज जी आप होंगे महाराज, आपकी हमको सेवा की जरूरत नहीं है, आप क्या सेवा करोगे। तो और उनको लगा अरे मैंने सेवा कैसे, कौन कर सकता है, नहीं नहीं महाराज जी आपको बताना पड़ेगा, कुछ ना कुछ सेवा करनी पड़ेगी। तो महाराज को समझा कि अपने पास जो धन है उसका गर्व है इसको, उसको लगता है कि मेरे पास धन है तो मैं सेवा कर सकता हूँ। बोला अच्छा बहुत सेवा करने की इच्छा है, चलो थोड़ी सेवा देता हूँ आपको। तो तीनों सांप बनकर बाहर आए झोपड़ी के, हाँ, और केशी घाट पर गए। और केशी घाट पर ना बहुत सीढ़ियाँ ना, आप देखा ना आज भी बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं पानी में उतरती, तो सब दिखाया उनको और एक उंगली दिखाया हरे कृष्णा, वो उंगली दिखाया, बोला वो कोने का एक कोने में टूटा हुआ है घाट, एक सीढ़ी जो है वो टूटी हुई है, उसको रिपेयरिंग करो। तो राजा बोलते महाराज, साधु जी को बोलते अरे ऐसे मैं कई घाट बनवा सकता हूँ, आप मुझे एक टूटा हुआ सीढ़ी बनाने को बोल रहे हैं। बोला अच्छा, तो सर पे उसके हाथ रखते, सर पे हाथ रखते ही अकबर को दिव्य वृंदावन के दर्शन होते हैं, मणि कंचन से बने हुए घाट चमचम चमचम चमक रहे हैं, सब जगह पर अनेक प्रकार के रत्न मणि माणिक पासू सब लगे हुए हैं, उसकी सीढ़ियां बनी हुई है, इतनी लंबी लंबी सीढ़ियां बनी हुई है केशी घाट की, और उसमें एक कोने में एक टुकड़ा टूटा हुआ है उसका। तो अकबर महाराज कहते हैं हरिदास जी को कि महाराज मेरा पूरा वैभव लगा के भी मैं ये टुकड़ा टूटा हुआ रिपेयर नहीं कर सकता। तो वैभव नतमस्तक हो गए उनके चरणों में। इस तरह से हरिदास जी की कृपा से अकबर को भी दिव्य वृंदावन के दर्शन हुए हैं। आगे क्या हुआ? आगे वही काम जारी रखा ना। अकबर बड़ा कहते हैं ना, ही वॉज अ वेरी श्रूड डिप्लोमेटिक पॉलिटिशियन। बड़ा हिंदू विरोधी था लेकिन बहुत चालू था, वो बहुत चालाक था। ऊपर दिखाता था कि मानसिंह को सैंक्शन दिया, मानसिंह सैंक्शन करके मंदिर बनाया। लोगों के अंदर, हिंदुओं के अंदर मत अपना अच्छा होना चाहिए, लेकिन अंदर से हिंदुओं के विरुद्ध था वो। तो वही भावना आगे जारी रखी। तो साधु का इतना दरा दर्शन होकर लाभ होकर भी आगे कुछ लाभ नहीं हुआ, क्योंकि आगे अपने कर्म जो है वो जारी रखे। वैसे उसने संत की कृपा होती ना, तो उस कृपा का आगे भी लाभ लेते रहना चाहिए। और लाभ कैसे लेंगे आप? जीवन में जब परिवर्तन करेंगे तो मिला हुआ लाभ कंटिन्यू होगा, और लाभ मिलने पर भी पाप करते रहेंगे तो लाभ नष्ट हो जाएगा। लाभ का कोई लाभ नहीं है। तो इस तरह से हरिदास जी की कृपा से बांके बिहारी जी का वृंदावन में स्थापना हुई। आज भी आप किसी भी दिन वहाँ पर जाइए, सीजन हो ना हो, फेस्टिवल हो ना हो, अगर आपके अंदर कुश्ती खेलने की आदत है तो ये आप जा सकते हो उस मंदिर में। इतनी भीड़ रहती है, और उधर आपका मोबाइल वोबाइल पैसे सब कुछ ले निकाले जाएंगे जेब में से। मेरा भी एक बार नया मोबाइल था, ब्लैकबेरी का, उस जमाने का टॉप मोबाइल, मैं जस्ट खरीद के जेब में रखकर बड़े भाव से भगवान को प्रार्थना कर रहा था। उतने में एक बालक ने मेरे उंगली में हाथ जेब में हाथ डाल के मोबाइल ले गया वो एक मिनट के अंदर। इतना बांके बिहारी का प्रस्थ है वृंदावन में, इतनी भीड़ वहाँ पर होती है। बांके जो बांके बिहारी के ठाट ही अलग है। उनका सोने का झूला है 500 किलो का, जो साल में एक दिन खुलता है, हरियाली तीज के दिन, जिसमें ठाकुर जी झूलते हैं। फूलों में सज रहे हैं मेरे बांके बिहारी, फूलों में सज रहे हैं। आए दिन बंगला रहता है उनके, फूलों का बंगला, बहुत सुंदर ठाकुर जी का वहाँ पर। वो 86 की यात्रा हुई थी ना, तो बांके बिहारी जी के मंदिर के बाहर बैठकर महाराज ने प्रवचन किया था। बोलो, कैन यू इमेजिन दिस? बांके बिहारी के मंदिर के प्रवेश द्वार के सामने जो द्वारपाल को बैठने की जगह होती है ना, वहाँ बैठकर हमको सीढ़ियों पर बिठा के 22 लोगों को प्रवचन किया था, और बताया था कि वहाँ पर बांके बिहारी के मंदिर में पर्दा बार बार बंद क्यों होता है। तो अद्भुत चीज़ है, आप देख रहे हो पर्दा बंद हो जाता है, आप पूरा देखने के पहले पर्दा बंद, फिर खुलता है, फिर आप देखने लगोगे फिर बंद। तो महाराज जी ने बताया कथा में कि बांके बिहारी ऐसे प्रेमी भगवान है, किसी की नज़र मिल गई उसके साथ चले जाते हो। तो एक दिन उन्होंने भोग लगाया, पर्दा खोला, पर्दा बंद किया, और जब भोग लगाने का होने के बाद में पर्दा खोला तो अंदर ठाकुर जी है ही नहीं। तो सब जगह ढूंढ रहे मंदिर में, किधर गए। तो मंदिर से बाहर निकलकर मंदिर के बाहर सीढ़ियों पे किसी भक्त से बात करते हुए बैठे थे। तब गोस्वामी की मीटिंग हुई, बोले ठाकुर जी बड़े चटपटे हैं, कब अपने भक्तों के साथ निकल जाएंगे? जिसकी नज़र मिल गई, आँखें मिल गई तो हाँ, दो मिले नहीं, दो मिले चार खिले। ऐसे बहुत सुंदर ब्रजवासी का दुआ होता है। तो वो दो मिलकर चार हो गए तो चारों खेल जाते हैं और चारों बाहर चले जाते हैं। तो उसने बोला कि किसी की नज़र मिलने के पहले बंद कर दो, उसको काट दो। तो आप भी ऐसा खड़े रहेंगे ना तो आपको लगेगा भाई देखना चाहिए बढ़िया प्रेम से, वो तो पीछे पर्दा आ जाएगा कुछ समय के बाद में, फिर नज़र मिलेंगे फिर पर्दा आ जाएगा। तो ये कथा महाराज जी ने हमको मंदिर के बाहर बैठ के सुनाई थी। और बांके बिहारी बड़े अद्भुत भगवान हैं। एक दिन ऐसे ब्रज में ना बहुत सिद्ध संत हैं जो बैठते हैं अपनी गुफा में, किधर कुटी में या कोई पेड़ के नीचे बैठते हैं, लेकिन वहाँ बैठकर सब ठाकुर के दर्शन करते रहते हैं, बिहारी जी के, वल्लभ जी के, सबके। तो एक दिन ऐसे ही व्यक्ति आया, बोला बोलो हमारे बांके बिहारी कभी कहाँ है अभी? उस समय रात को 12 बज रहे थे। ऐसे ही पूछा उनको मजाक के रूप में, टेस्ट के रूप में। तो साधु बोले, थोड़ा ध्यान किया और बोले, वो बांके बिहारी के बाहर के बाजार में एक दुकान में अभी अभी गरम गरम मिठाई बनी है, उसका भोग ले रहे हैं। तो बोला क्या बकवास कर रहे हैं, मंदिर तो कब का बंद हो चुका, अभी कहाँ ठाकुर जी भोग ले रहे हैं, थोड़ा जाओ देखो, देख के आओ। तो वो गया आदमी, रात की सब दुकान बंद, सब मंदिर बंद, रास्ता सब सुनसान, और एक दुकान में वो एक बूढ़ा दुकानदार था मिठाई वाला, बड़ा भक्त था बांके बिहारी जी का। वो अगले दिन के लिए मिठाई बनाकर रात को 12 बजे तैयार करके गरम गरम बिहारी जी के चित्रपट को भोग लगा रहे हैं। और बिहारी जी कैसे हैं, बड़े प्रेम से वहां प्रकट होकर मिठाई खा रहे हैं। ऐसे ही ठाकुर जी, ऐसे एक बुढ़ा आदमी था, उसको अचानक एक दिन लगा कि सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति की सेवा करनी चाहिए, वही जीवन का उद्देश्य। वो देखा गांव में सबसे बड़ा आदमी सरपंच है, सबको छोड़ के उसकी सेवा में लग गया। एक दिन सरपंच के सामने नगराध्यक्ष आया, वो उसकी सेवा में लगा, तो समझ में आया कि सरपंच के ऊपर नगराध्यक्ष है, तो उसको छोड़ा, नगराध्यक्ष की सेवा में लगा। कुछ दिन उसकी सेवा में रहा, तो एक मंत्री आया, तो नगराध्यक्ष उनकी सेवा में लग गया। तो ये देखकर उसको लगा कि ये तो उससे बड़ा आदमी है, तो उसको छोड़ के मंत्री की सेवा में लग गया। ऐसे करते 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 एक दिन मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री के बाद में सेंट्रल मिनिस्ट्री, ऐसा करके केंद्रीय मंत्री करके प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री के बाद राजा का परिचय हुआ, तो सबको छोड़ के राजा की सेवा में लग गया। तो राजा की सेवा में बहुत दिन रहा, उम्र बढ़ती जा रही थी, मरने के पहले सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति की सेवा करने के लिए उसको आनंद हुआ कि भाई सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति का पहचान हो गई मेरी। तो क्या देख रहा है, एक दिन अचानक पता चला उसको कि राजा ना रात को 10 बजे के बाद में राज वस्त्र अलंकार मुकुट मुकुट सब उतार के सूती वस्त्र पहनकर, एक सूती वस्त्र पहनकर नंगे पैर जंगल में जा रहा है। तो इसके पूछे पूछे गया कुतूहल से, तो राजा कहाँ पहुँचा, वृंदावन में पहुँचा। वो बीच जंगल में बांके बिहारी का मंदिर है, आज बोलेंगे तो हंसेंगे आप, जंगल तो पैर रखने को जगह नहीं, आदमी इतने आश्रम हैं कि कहाँ खड़े होने को जगह नहीं वहाँ पर। लेकिन वो बंसीवट, जब भगवान ने बंसी बजाई थी, जब बांके बिहारी प्रकट हुए थे, निधिवन, ये सब जंगल था उस समय। तो राजा अपने महल से बहुत दूर अकेले चल के गया और मंदिर में गया, और उसने मंदिर में जाकर बांके बिहारी को दंडवत किया। तब कुछ संध्या हुई थी, इतना देर रात को नहीं हुई थी, थोड़ा सा शयन का समय था। राजा ने शयन आरती अटेंड की, बहुत देर तक भजन किया अकेले में। दूर से ये बुढ़ा व्यक्ति देख रहा है राजा को कि हमारा स्वामी जो है वो किसी और बड़े आदमी की सेवा में तो उसी समय राजा की सेवा छोड़ दी, अपने मन ही मन में छोड़ दी, और वो मंदिर में ही बुढ़ा जाके रुक गया। कुछ देर बाद में राजा चले गए अपने, और कुछ देर बाद पुजारी आए, और पुजारी मंदिर के बाहर आए, अंदर थे पुजारी, मंदिर सब शयन कराया, बंद कराया, और पता है ना आपको भगवान का वन दरवाजा, दो दरवाजा, तीन दरवाजा, ऐसा करते 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 एकदम बाहर के दरवाजे में आके बाहर आए, और बड़ा दरवाजा लगाया, कुंडी लगाया और ताला लगाया उसके ऊपर। तब ये वृद्ध व्यक्ति वहाँ पर खड़ा है, तो पुजारी को बोलते हैं मेरे जीवन में बहुत समय कम बाकी है, मुझे बांके बिहारी की सेवा में लगाओ। तो ठीक है कल आ जाओ, लगा देंगे सेवा में। नहीं नहीं, मुझे पता नहीं मैं कल तक जीवित रहूँगा कि नहीं, मुझे आप भी बांके बिहारी की सेवा दो। तो पुजारी बोलते हैं पागल लगता है व्यक्ति, अभी वह कैसे उसको छुड़ाए पीछा उसका, बोला अभी सेवा में लगाओ, अभी सेवा में लगाओ। तो बोला अभी कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, हमको जाना है घर पे सोने के लिए। तो कहते देखो ताला लगा दिया है, हाँ ताला लगा दिया है, इसमें से कोई अंदर या बाहर जाना नहीं चाहिए। इसका मतलब क्या होता है, ताला क्यों लगाते हैं ताला लगाया मतलब अंदर कोई जाएगा नहीं, बाहर से अंदर कोई आएगा नहीं, अंदर से बाहर कोई जाएगा नहीं, लेकिन उसको कुछ लगाना तो सेवा में, यहीं खड़े हो जाओ सुबह तक, जब तक हम नहीं आते तब तक यहाँ से कोई अंदर जाना नहीं चाहिए और अंदर से बाहर नहीं आना चाहिए। बोला ठीक है, लग खड़ा हो गया। ठंड का मौसम था। कुछ ही देर के बाद स्वयं बांके बिहारी लॉक दरवाजे से बाहर आ गए। पुजारी ने ठंड के समय था ना, तो शॉल वॉल बोढ़ के रखी थी, गर्म ऊनी शॉल, बाहर आए। तो बोले ए कौन हो आप, यहाँ से किसी को परमिशन नहीं है, मैं बांके बिहारी के सेवा में हूँ, अगर कोई अंदर से बाहर, बाहर से अंदर आ नहीं सकता है। तो ठाकुर जी कहते मैं स्वयं बांके बिहारी हूँ अच्छा तुरंत दंडवत प्रणाम करते हैं, अरे बड़ी लंबी जल्दी सेवा मिली हमको, अभी अभी तो कल की बात हो रही थी, कल सवेरे सेवा मिलेगी और अभी तो साक्षात भगवान ने ही दर्शन दिए। बोले भगवान मैं आपकी सेवा में रहना चाहता हूँ। तो भगवान जाने लगे, बोले कहाँ जा रहे हैं? मैं जा रहा हूँ रास खेलने के लिए, तो मैं भी आता हूँ आपकी सेवा करने के लिए, चलो मेरे साथ। तो ये गए ठाकुर जी, चलते चलते बूढ़े बूढ़े व्यक्ति को लेकर बंसीवट तक गए रास मंडल में, और बोले हाँ खड़े रहो, और खुद अंदर गए और रात भर रास खेलते रहे। और सवेरे 3-3:30 के आसपास, अभी थोड़ा सा टाइम है मंगल आरती के लिए, थोड़े उसके थोड़े से पहले रास से बाहर आ गए थके हुए भगवान। तो वृद्ध व्यक्ति वही खड़ा है आदेश के अनुसार, बोले चलो मेरे साथ। तो दोनों व्यक्ति चल के फिर वहाँ से, आज भी दूर है वो स्थान, हाँ आज भी अगर आप बंसीवट से चल के आएंगे ना, कम से कम 3-4 किलोमीटर है। उस अंधेरे में जंगल में ठाकुर जी के साथ में चल के आ रहे हैं बड़े अदब से, और ठाकुर जी दरवाजे के पास आए जो लॉक था, जिसके पास मुलाकात हुई थी उनकी। तो ठाकुर जी कहते हैं ठंड लग रही है आपको, क्योंकि बुड्ढे के पास तो गर्म वस्त्र था नहीं, तो वो कांप रहा था, रात भर भी कांपता रहा, अभी भी भगवान के सामने कांप रहा है। तो भगवान ने कहा ये अपना शाल उतारा और उसको पहना दिया, बोला बैठो यहाँ पर आराम से, और ताले वाले दरवाजे से भगवान अंदर गए और अपनी जगह पर बैठ गए जाके। कुछ ही देर बाद में वो पुजारी आ गए मंगला करने के लिए। तो ये बोल रहा अरे दरवाजा मत खोलो, ठाकुर जी अभी अभी आए। बोले कहाँ से अभी अभी आए? रात भर रास खेलते रहे। बोला बिल्कुल पक्का पागल आदमी ये, 100%। रात को थोड़ा पागल था, अभी पूरा ही पागल हो गया दिन सुबह तक। और उनको रोक रहा है वो, दे खोलने को दे दे रहा है। बोलते अभी अभी आए, सोएंगे कब? आप अभी जगाएंगे मंगला करेंगे तो उनको नींद कब मिलेगी? फिर भी बोले हटा दो उसको बाजू में, और दरवाजा खोल के अंदर गए, देखते शॉल गायब। तो सब जगह पूछताछ कर रहे हैं, अरे कौन कौन कौन, किसी को पता नहीं, अंदर अंदर कोई था ही नहीं, तो क्या जो लोग आए उनको पूछ रहे, किसी को पता नहीं है। और बाहर आए, बोले भगवान की शाल किधर है? बोले ये क्या है भगवान की शाल, तुम्हारे ऊपर कैसे आई? अरे मैं बता तो रहा हूँ तुमको, अब मैं उनके साथ में गया था, उनके ऊपर ये शाल थी, वो शाल पहन के रास नृत्य करते रहे, शाल पहन के बाहर आए, हम लोग चल के आए, और अंदर जाते वक्त उन्होंने कहा आपको ठंड लग रही है तो मुझे ये पहनाया, अभी यकीन आया तुमको? तब समझ में आया कि पागल आदमी नहीं है, सत्य आदमी, ठाकुर जी की शाल उसके ऊपर थी, तो चरणों में गिर गए उसके वो। और इसलिए तो कह रहा हूँ अभी अभी आके अंदर गए सोने के लिए, मैं जगाओ मत उनको आप। तो फिर उन्होंने माना इस बात को, और उस समय कुछ 4 बज रहे थे, तो 9:30 को मंदिर खोला। उस समय से बांके बिहारी के मंगल आरती 9:30 को होती है। और सर्दी में 10 बजे होती है, आधा घंटा और लेट, और लेट उठते हैं और सबसे लेट भी सोते हैं। सारे वृंदावन के मंदिर जो है वो 8:30, 8:00, 7:45, 8:15 सब बंद हो जाते हैं, और बांके बिहारी जी गर्मी में 10 बजे तक, और सर्दी में 9:30 तक खुले रहते हैं। और बांके बिहारी खुले हैं, सब बाजार भी खुला है, लस्सी का दुकान भी खुला है, टिक्की का ठेला भी खुला है, जो मिठाई का दुकान, सब कुल्लड़ सब खुले है। बांके बिहारी के बंद होते ही वृंदावन बंद हो जाता है, लोही बाजार भी बांके बिहारी के बंद होने के बाद में बंद होता है, क्योंकि उनको पता है लोग बिहारी का दर्शन करने आएंगे तो लोही बाजार में उसके बाद में आएंगे, कुछ खरीदी करेंगे, और जब तक बांके बिहारी जी खुले हैं तब तक लोग आते रहेंगे, जब बांके बिहारी सो गए सब सो जाएंगे। ऐसे बांके बिहारी का महिमा है, बहुत सुंदर बांके बिहारी का लीला है, बहुत सुंदर। उनका बगीचा है उधर दामादल कुंड के पास, बांके बिहारी जी का बगीचा, वहीं से फूल आते हैं। ऐसे ऐसे भक्त हैं उनके, से 2 किताबें बड़ी बड़ी, बांके बिहारी का चमत्कार, ऐसे हजारों भक्त हैं वृंदावन में थे, जो अपने कुटी में भजन करते थे और कभी बाहर निकलते नहीं थे, लेकिन लोग उनको पूछते थे कि बिहारी जी ने आज क्या श्रृंगार किया है, तो पूरा श्रृंगार का वर्णन करते थे, और वही श्रृंगार लोग वहाँ पर जाके पाते थे। ऐसे कई भक्तों की चमत्कारी कहानियाँ हैं। ओके, अभी श्याम सुंदर जी, अगले ठाकुर जी वृंदावन के, तो वो हमारे थे दुखी कृष्णदास, वो भगवान के एक मित्र हैं, बहुत प्रिय मित्र हैं, सुबल सखा। तो सुबल सखा जो है चैतन्य महाप्रभु के समय पर गौरीदास पंडित के रूप में प्रकट हो गए, वो अंबिका कालना में रहते थे, तो उनके एक शिष्य थे चैतन्य दास, और उनके पास गौर निताय की मूर्ति थी। बहुत सुंदर लीला है, अभी बहुत लंबे लंबे लीला है, लेकिन छोटी लीला बताता हूँ कि वो भी डंडा लेकर गौर निताय की सेवा करते थे। गौर निताय प्रत्यक्ष होकर गंगा किनारे, उधर अंबिका कालना के, आप गए अंबिका कालना गए आप लोग? गंगा किनारे पे हैं, बोट में जाना पड़ता है, बहुत सुंदर। नित्यानंद प्रभु भी वहाँ से बोट में अंबिका कालना गए थे, उनका जो बोट का हुआ है ना, और वो भी मंदिर में रखा हुआ है। नदी किनारे पे गौर निताई अपने फ्रेंड्स के साथ में खेलते थे गंगा के रेत में, तो ये गौरीदास जी डंडा लेकर उनको पीछे भागते थे, ए चलो खाना खाने के लिए चलो, कितना देर खेलते रहोगे, उद्दंड बने रहोगे। तो एक दिन उनके पीछे गए डंडा लेकर, तो भागते गए गौर निताई, भाग रहे पीछे डंडा लेके भाग रहे। तो वो गौर निताई चैतन्य दास के कुटी में आए, और फिर भी उसके पीछे पीछे गौरीदास जी भाग के आए, तो चैतन्य महाप्रभु चैतन्य दास के हृदय में लुप्त हो गए, हार्ट में प्रवेश किया। तब से उनका नाम पड़ा हृदय चैतन्य दास। जिनके हृदय में जाकर चैतन्य महाप्रभु छुप गए, तो वो हृदय चैतन्य दास के शिष्य थे, जिनका नाम था दुखी कृष्णदास। कुछ दिनों बाद में उन्होंने उनको वृंदावन भेज दिया। मैं आपको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड बता रहा हूँ, और बोला कि जाओ जीव गोस्वामी के अंडर रहो और वहाँ ट्रेनिंग ले लो। तो आए वो, और जीव गोस्वामी के पास श्यामानंद नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य, ये सब पढ़ते थे, उनके साथ ये भी जुड़ गए। अलग अलग गुरुओं के शिष्य थे ये, और शिक्षा होने के बाद में फिर ये बड़े प्रेम से ब्रज गलियों की बुहारी करते थे, यानी झाड़ू लगाते थे रस्तों की, और बड़ा मग्न होकर धूल में लोटपोट रजस्नान करते हुए ये झाड़ू लगाते थे। तो एक दिन अंधेरा हो गया और झाड़ू लगा रहे हैं, आंखों से आंसू आ रहे हैं, धूल पूरी स्नान करा रही है, उतने में एक सुंदर लड़की सज सज के उनको मिलने आती है, और कहते हैं महाराज जी कोई पायल मिले क्या आपको? पायल नूपुर मिला है, नूपुर? तो उसके कुछ ही समय पहले उनको एक नूपुर मिला होता है, और वो नूपुर इतना अंधकार में भी इतना प्रकाशमान था कि उसको देखकर बहुत भौचक्के रह गए वो। उतने में लड़की आई तो कहते हैं कि हाँ मिला है मुझे। बोला किसका है? तो लड़की कहते हैं कि मेरे स्वामिनी का है। तो वो भी समझ गए, बोलते स्वामिनी को लेके आऊँ फिर दूंगा। तो ठीक है, वो चली गई। वो थी ललिता देवी और नूपुर था राधा रानी का। तो राधा रानी को लेकर आई, राधा रानी और अकेले थोड़ी राधा रानी, सब सखियों के साथ, और एक पेड़ के पास दूर उनको रुकाया सबको, और ये आगे आई, बोले हमारे स्वामिनी जी आ गए, ये देखो वहाँ पर बैठी है। तो वो नूपुर लेके ललिता जी उनको स्वामिनी के पास ले गई, और हमारे दुखी कृष्ण ने वो जो नूपुर था वो घुटने में होकर पैर के नीचे बैठ कर उनको ऐसा अर्पण किया, सुनो ध्यान से एकदम, ऐसा अर्पण किया। तो राधा रानी सिंहासन में बैठी थी उस समय, उन्होंने उसके हाथ से वो नूपुर लिया और उसके कपाल पर ऐसा उसको दबाया, ऐसा जमदम जो नूपुर ऐसे ऐसा लिया और ऐसा कपाल पे चिपका दिया, तो उसका चिन्ह उसके कपाल पे आया। घड़ी कैसे ऐसे 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 है ना सब कुछ, ऐसा अद्भुत प्रकार का तिलक निर्माण हो गया कपाल पे। एक काम किया तो इससे वो भाव विभोर हो गया, और भाव विभोर हो गई तुरंत वो कनक मंजरी बन गए, उनका शरीर जुदा पुरुष शरीर वो रूपांतर होके जो उनका मूल स्वरूप था कनक मंजरी का वो प्रकट हो गया। सब गोपी ने श्रृंगार किया, उनका पूरा सुंदर बना दिया, उनको गोपी बना दिया कनक मंजरी को। तो भगवान ने कहा, राधा रानी ने कहा, आज से तुम्हारा नाम जो है वो श्यामानंद होगा। दूसरा चमत्कार हो गया ना, एक तो तिलक लगाया मनुपुर का तिलक लगाया, दूसरा नाम बदल दिया, और तीसरा बैठे बैठे राधा रानी ने सिंहासन से हृदय से श्याम सुंदर की मूर्ति प्रकट की, इतनी सी बहुत सुंदर, बोले इसका पूजन करो। और ऊपर से क्या बताया, ये तीनों बात तो किसी को बताना नहीं, आप सबसे बड़ी आफत तो यही है, चमत्कार होना, चमत्कार देखना और चमत्कार सबको बताने का इतना तीव्र इच्छा होती है और आदेश क्या है किसी को नहीं बताना। तो ये मूर्ति लेकर घर पे आए, अपनी कुटी पर लेके आए और वो मूर्ति की सेवा करने लगे और अपना नाम श्यामानंद बताने लगे और तिलक भी अजब सा लगाने लगे, क्योंकि तिलक का इम्प्रिंट तो था ही, उसके ऊपर चंदन का तिलक भी लगाते थे। तो बाकी भक्तों को लगा कि ये मार्ग भ्रष्ट हो गया, गुरु जी का दिया हुआ नाम खुद बदल दिया उसने और गुरु जी का दिया हुआ तिलक छोड़कर अभी ये कुछ अलग ही तिलक लगा रहे हैं। तो उसकी जरा सा बदनामी हो गई। आमतौर पे कभी भी दीक्षित भक्त कभी अपना नाम नहीं बदलता है, तिलक नहीं बदलता है, ड्रेस का स्टाइल नहीं बदलता है, धोती का स्टाइल नहीं बदलता है, और संप्रदाय का धोती नहीं पहनता है, अपने स्टाइल में पहनता है। तो ये सब लोग उसको पूछ रहे हैं तो ऐसे क्यों कर रहे हो, तो बता भी नहीं पा रहे हैं, उसको आदेश है नहीं बताने का। तो धीरे 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 इसकी ये बात जो है कि ये भ्रष्ट हो गया है, मार्ग भ्रष्ट हो गया है, डिविएट हो गया है, अपने धर्म को अपने संप्रदाय को छोड़कर कुछ अलग ही कर रहा है, क्या समझता है अपने आप को, ऐसे भावना निर्माण हो गई। और वो बात फैलते 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 अंबिका कालना हृदय चैतन्य महाराज तक पहुंची कि तुम्हारा शिष्य वहां वृंदावन जाके अच्छा होने के पहले बदले भटक गया है पूरा, ऐसे ऐसे करता है। तो उनको इतना क्रोध आया कि मैंने उसको सीखने के लिए भेजा था तो वो इतना मार्ग भ्रष्ट हो गया वहां जाके, तो भाग के दौड़ के आए वहां से। उस समय तो गाड़ी बड़ी कुछ है ही नहीं, चलते चलते क्रोध में आ गए, वृंदावन पहुंचे और वृंदावन में आकर पहुंचे और सीधा उसको पीटना शुरू किया उन्होंने। इतना पीटा कि बाकी लोगों को भी पहले क्रोध था इसके ऊपर कि ये बहुत बड़ा भ्रष्ट हो गया है, लेकिन वो पीटने का देखकर उनको दया आ गई। बोले महाराज जी मत पीटो, मर जाएगा वो कुछ बोल भी नहीं रहा है, वो पूछ रहे क्यों कर रहे हो ऐसा, क्यों नाम बदली कर दिया, क्यों तिलक लगा रहे हो, वो कुछ भी नहीं बोल रहा है, खाली मार खा रहा है, मार खा रहा है, मार खा रहा है। उसकी वो दयनीय अवस्था देखकर बड़े व्याकुल हो गए सब लोग और बीच में पड़ गए उसके ऊपर और स्वामी जी को बाजू में कर दिया, महाराज बस मत मारना उसको। तब तक रात हो चुकी, दिन भर मार रहे थे उसको, तो थक गए थे बेचारे मार मार के, थोड़ा सा फ्रेश हो गए और सो गए। सोने के बाद में स्वयं श्याम सुंदर भगवान उनके स्वप्न में आए, किसके, गुरु जी के, और बहुत डांट लगाई उनको, क्यों तुम पीट रहे हो। राधा रानी स्वयं आके बोल रही स्वप्न में कि ये नाम मैंने दिया है उसको, ये तिलक मैंने मेरे नूपुर का उसके शीश पर लगाया है और ये मूर्ति भी मैंने दी है मेरे हृदय से निकाल कर, क्यों पीट रहे हो उसको तुम। तो नींद में जग गए एकदम अचानक, उनको एकदम साक्षात्कार हुआ ना सत्य का जो प्रश्न पूछ रहे थे बार बार। रात को 2:30 बजे उठकर सीधे भागे उसके कुटी में और कुटी में वो सोया था बेचारा, मार खाकर थका था बेचारा, उसके चरणों में जाके वंदन कर दिया गुरु ने, दंडवत प्रणाम, बोले माफी चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ, तुम मेरे से बहुत श्रेष्ठ हो, मेरे गुरु बनने के योग्य हो, मैं तुम्हारा शिष्य बनने के योग्य हूँ, मैं साक्षात राधा रानी ने आकर इतनी कृपा की है। तो फिर उन्होंने कहा कि राधा रानी ने कहा उनको, मैंने उसको कहा था किसी को बोलना नहीं, इसलिए वो बोला नहीं किसी को, मार खाता रहा अपन बोला नहीं किसी को। तो अपने शिष्य की महानता उनको पता चली, तो वो है श्याम सुंदर जी। अभी अपने मंदिर में जो फोटो लगाया ना, वो वास्तविक श्याम सुंदर जी नहीं है, वो मंदिर में 3 श्याम सुंदर जी है, तो बीच में खड़े ना वो ब्रज जनानंद गोस्वामी महाराज थे जो उनके बाद में हुए, उनके श्याम सुंदर जी हैं, बड़े श्याम सुंदर जी वो बीच में हैं, और ये साइड में एक और एक श्याम सुंदर जी हैं, नहीं कुंज बिहारी जी खड़े हैं, कुंज बिहारी जी, और वो है क्या नाम है उनका भूल गया मैं, और एक गोस्वामी जी हैं। और ये मेन जो मंदिर के ठाकुर जी हैं श्याम सुंदर जी, उनके अपने दाहिने हाथ में एक छोटी सी मूर्ति है, वो श्यामानंद प्रभु के श्याम सुंदर जी हैं, और उसी मंदिर में गुफा है जो जमीन से अंडरग्राउंड है, 2 मंजिल, उसके नीचे श्यामानंद जी गोस्वामी महाराज तप करते थे। ऐसा बहुत सुंदर मंदिर है। अभी कौन सा मंदिर बचा, दामोदर जी है ना। तो रूप गोस्वामी जी कई जगह उन्होंने अपना भ्रमण किया है, तो जब भी उनका मंदिर बन रहा था गोविंद जी का, तो कुछ समय वो अपने भतीजे के मंदिर में रहे जीव गोस्वामी, क्योंकि वो 3 भाई थे, रूप, सनातन और अनुपम। अनुपम गृहस्थ बने, रूप सनातन सन्यासी बने, और अनुपम के पुत्र है जीव, जब छोटे से थे तो छोटे छोटे कृष्ण बलराम के विग्रह की सेवा करते थे, रात को कृष्ण बलराम के विग्रह को गोद में लेकर सोया करते थे, बचपन से ही उनको कृष्ण बलराम ठाकुर जी की सेवा करने की आदत थी, बहुत प्रेम था ठाकुर जी से। जब बड़े हो गए तो संन्यास्त होकर वृंदावन में आ गए अपने चाचाओं के पीछे पीछे, और वही वृंदावन में रहने लगे सेवा कुंज के पास, जहाँ पर एक तरफ श्याम सुंदर जी का मंदिर है श्यामानंद गोस्वामी का, इस तरफ सेवा कुंज है, उसके आगे बाद में दामोदर जी का मंदिर बना, तो वहाँ रहते थे। तो गोस्वामी उनके पास जाके रहने लगे, तो उन्होंने देखा कि जीव के अंदर, मतलब जीव गोस्वामी के हृदय में विग्रह की सेवा करने की बहुत तीव्र इच्छा जागृत हुई है। क्यों? क्योंकि सब लीलाओं का श्रवण किया ना, कि वो योगपीठ में रहते थे, वो एक गाय आके रोज दूध देती थी, फिर स्वप्न में आए, फिर खुदाई की, फिर गोविंद जी प्रकट हो गए, फिर अभी वो मान सिंह की कृपा से मंदिर बन रहा है, गोविंद जी की सेवा हो रही है, रूप गोस्वामी ने भी किया, वो रघुनाथ भट्ट भी कर रहे हैं, तो ये सब जो संग हो रहा है ना, उससे प्रेरणा मिल रही है कि हमको भी ठाकुर जी होने चाहिए। तो रूप गोस्वामी को लगा कि इनको विग्रह बना के देने चाहिए। अभी रूप गोस्वामी को मूर्तिकार नहीं थे, लेकिन इच्छा थी कि इनको देना चाहिए। राधा रानी रूप गोस्वामी के स्वप्न में आई और रूप गोस्वामी को स्वप्न में निर्देश दिया कि पत्थर से कैसे मूर्ति बनानी है, स्वप्न में सिखाया, ट्रेनिंग दिया, हाउ टू मेक डीटी आउट ऑफ स्टोन। तो रूप गोस्वामी ने उस ट्रेनिंग के अनुसार काले पत्थर में से बहुत सुंदर कृष्ण की मूर्ति बनाई अपने हाथ से, और वो है दामोदर जी, जो उन्होंने जीव गोस्वामी को भेंट दे दी, और वो है दामोदर जी के मंदिर में, जहाँ पर रूप गोस्वामी के भजन कुटी भी है। फिर कालांतर में रूप गोस्वामी का देहांत हुआ तो उनकी समाधि भी उसके सामने बनी। तो दामोदर जी के मंदिर में क्या क्या है? रूप गोस्वामी के भजन कुटी भी है, उनकी समाधि भी है, दामोदर जी का विग्रह भी है, और आज की तारीख में वहाँ पर बहुत सारे विग्रह हैं, उसका भी बड़ा इतिहास है। वो थे कृष्णदास कविराज गोस्वामी, चैतन्य महाप्रभु के शरद गोस्वामी के अगली पीढ़ी के संत थे वो, उन्होंने चैतन्य चैतन्यमृत लिखा। उनके विग्रह है राधा वृंदावन चंद्र, वो भी सेवा कुंज में रहते थे, अभी भी उनका मंदिर पीछे है, बहुत सुंदर। लेकिन कालांतर में जब गोस्वामी जी चले गए तो मंदिर की देखभाल भी होना बंद हो गया, और जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी के बाद के प्रमुख आचार्य थे। तो जब उन्होंने देखा कि मैं संप्रदाय का प्रमुख हूँ और यहाँ पर मूर्तियों की सेवा नहीं हो रही है, तो वो मूर्ति को अपने मंदिर में लेके आए, राधा वृंदावन चंद्र, बहुत ऊंचे हैं वो अपने मंदिर में। देखो उधर हम दीपदान करते ना, तो लेफ्ट साइड में एक बड़ा फोटो लगाया हुआ है, वो वृंदावन चंद्र है। तो राइट साइड में जयदेव जी की, राधा माधव की मूर्ति भी सेवा कुंज में थी, और तो वो 8वीं सेंचुरी के संत थे, उनकी भी सेवा नहीं हो रही थी, मनी की भी, धन की भी कमी थी, फाइनेंशियल रीज़न, सोशल रीज़न, स्पिरिचुअल रीज़न करके वो उन्होंने उनको भी लाया। फिर भूगर्भ गोस्वामी, वो लोकनाथ गोस्वामी के साथ सबसे पहले, 6 गोस्वामी के भी पहले, महाप्रभु के भी पहले वृंदावन में आए थे, और उनके विग्रह थे वो राधा छैल चिकन, भूगर्भ गोस्वामी के, वो भी अपने मंदिर में लाए। फिर सनातन जी गुजर गए और उनको कृष्ण भगवान ने दर्शन देकर वो शिला दी थी गोवर्धन की, है ना, वो जो शिला वो परिक्रमा करते ना 40 किलोमीटर्स के रोज रोज, बुढ़ा होने के बाद धीरे धीरे करते थे दिन भर। तो भगवान ने दर्शन दिया, मत करो मत करो, तो नहीं माने वो, तो ठाकुर जी पर्वत में गए, मुरली बजाई, वो शिला पिघल गई, मुरली बजाना बंद किया, पिघली हुई शिला को उठाया जिसमें पैर के निशान थे, वो पीछे पीछे भागे, तो वो चली रहे, वो रुके नहीं, तो शिला लेके कृष्ण भगवान बालक के रूप में पूरा परिक्रमा किया, फिर लौट के कुटी में आए चक्रेश्वर महादेव पे। तो वो ठाकुर जी ने, वो बालक बन के आए थे ना, वो शिला उनके कुटी में रखी और बोला अभी तो मेरी बात सुनो, पूरी परिक्रमा करवाई तुमने मुझे, अभी तो तुम यहाँ परिक्रमा करना बंद करो, बड़े बुढ़े हो गए हो, बड़ी सेवा की तुमने, अभी 4 बार इसका परिक्रमा करो तो गिरिराज की परिक्रमा का लाभ मिलेगा तुमसे। चले ठीक है रख दो, और बच्चा है, बच्चा का क्या सुनना है, मुझे परिक्रमा देनी है। रात में वही बालक स्वप्न में आया, और वो बालक स्वप्न में आया और कृष्ण बना स्वप्न में, बोले मैं स्वयं आके तुम्हें विनती कर रहा हूँ, आज से परिक्रमा करना बंद करो और इस शिला की 4 बार परिक्रमा करो। तो उसके बाद भी वो समझ गए कि वो बालक नहीं था, वो स्वयं कृष्ण थे, मुझे आदेश का पालन करना चाहिए था, मैं नहीं माना, स्वप्न में आके दिखाना पड़ा दर्शन। तो फिर तब से वो कुटी में ही 4 परिक्रमा करके वही भजन करते थे। एक दिन कुटी में ही अपना शरीर छोड़ दिया उन्होंने, तो उनका शरीर आकर वृंदावन में वो जो है ना मदन मोहन जी का मंदिर है ना उसके नीचे रखा गया, उस समाधि उनकी बनाई गई। तो अभी ये शिला का क्या करना है, क्योंकि संप्रदाय के वारसदार कौन थे, जीव गोस्वामी, तो शिला उनके कब्जे में आई, गोवर्धन से उनके पास आई। इसीलिए राधा दामोदर मंदिर जो जीव गोस्वामी का मंदिर है, उनके मंदिर में ठाकुर जी की बड़ी शिला है, गिरिराज शिला, जो बड़े चरण चिन्ह हैं ठाकुर जी के, बड़े बड़े दो, और उसमें गाय के भी चिन्ह हैं, लकुटी के भी चिन्ह हैं, बंसी के भी चिन्ह हैं। वो इतनी बड़ी शिला जो है बड़ी विशेष चीज़ है। आज भी लोग वृंदावन में हर रोज जाकर वो मंदिर की चार बार परिक्रमा करते हैं, तो उससे गिरिराज की परिक्रमा करने का लाभ मिलता है। ये हो गए दामोदर जी, श्याम सुंदर भी हो गए। अभी वो मंदिर है एक बड़ा, एक मंदिर गोकुलानंद जी का, उधर विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद के ठाकुर जी हैं, छोटे से ठाकुर जी गोकुलानंद, वो जमुना जी के पास किसी घाट के पास है, वो मंदिर के अंदर है। और एक विग्रह है, वह है चैतन्य महाप्रभु का विग्रह, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कथा इतनी फास्ट चल रही है, अगर आपने एक झपकी बीच में ली तो एक ठाकुर जी मिस हो जाएंगे आपके। तो नरोत्तम दास ठाकुर जब दोबारा एक बार सन्यासी बनने के बाद में अपने गांव गए थे, तो एक गोदाम में प्रवेश किया था उन्होंने, तो उस गोदाम में उनको 5 विग्रह मिले, उसमें से एक विग्रह है राधा ब्रजमोहन, जो उद्धव गोपी मिलन स्थली जहाँ है उधर ज्ञान गुदड़ी में, वहाँ पर स्थापन किए गए हैं, जो हमारे इंद्रदुन महाराज ने उसका जीर्णोद्धार किया मंदिर का, जिस मंदिर में नरोत्तम दास ठाकुर के जीर्ण हरिदाम चद्दर, उन्होंने पढ़ा हुआ भागवत, उन्होंने पूजा की हुई गिरिराज शिला, उन्होंने पहने हुई तुलसी माला, वो सब उस मंदिर में है। और राधा ब्रजमोहन का एक विग्रह वहाँ स्थापन किया गया, दूसरा एक चैतन्य महाप्रभु का विग्रह है वो उस गोकुलानंद मंदिर में है, ऐसा हाथ ऊपर करके, ऐसा पीले रंग की मूर्ति लेफ्ट में सबसे। हमारे भी मंदिर जाएंगे ना गोकुलानंद जी के, तो आपको वो फोटो मिलेगा उसके अंदर। फिर उस मंदिर में एक राधा विनोद जी का विग्रह है गोकुलानंद जी के मंदिर में, एक है गोकुलानंद जी स्वयं, दूसरे है चैतन्य महाप्रभु नरोत्तम दास ठाकुर जी के, फिर राधा विनोद वो किसके हैं, लोकनाथ जी महाराज के। लोकनाथ जी महाराज उमराव गांव में खदीरवन के पास भजन कर रहे थे, तो उधर एक कुंड है किशोरी कुंड, उसके सामने बैठ के भजन कर रहे थे। उसमें से एक दिन भजन करते करते राधा विनोद जी बाहर आ गए सीधे और उनके हाथ में आ गए, और हाथ में आते हंस दिए, स्माइल दिया उन्होंने बहुत, और कहा आज से माँ बाप आपके साथ रहेंगे। तो लोकनाथ जी कहते मैं तो अभी इतना पकड़ साधु हूँ, मैं कहाँ रहता हूँ, कहाँ पीता हूँ, खाता हूँ, कुछ पता नहीं है, तो जहाँ भी रहोगे एक झोली बना दो और झोली हमारी, हमको झोली में डाल दो, झोली गले में लटका दो और ले चलो हमको जहाँ पर भी, जो खाओगे खिलाओ, जहाँ रहो वहाँ रखो रखो हमके लिए। तो वो है राधा विनोद जी। फिर आखिर में अपने जीवन के अंत में जब घूमना फिरना बंद हो गया तो लोकनाथ जी महाराज यमुना किनारे आए और वहाँ पर उन्होंने ये विग्रह रखे राधा विनोद जी, बड़े चब्बी फर्स्ट क्लास एकदम, अभी जयपुर में हैं और प्रतिकृति उनकी उधर यमुना किनारे हैं। तो वो लोकनाथ महाराज के राधा विनोद जी हैं और लोकनाथ जी की समाधि भी उसी मंदिर में है, प्रत्यक्ष समाधि। और एक विग्रह उस मंदिर में है राधा विजय गोविंद, और ये राधा गोविंद जी की प्रतिकृति है वैसे, लेकिन एक ज़माना था विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद के समय पे एक बड़ी क्या कहते हैं उसको, अखिल भारतीय गोष्ठी होने वाली थी और केवल उन्हीं संप्रदायों को आमंत्रण था जिनके पास वेदांत सूत्र पर भाष्य अवेलेबल है, उन्हीं को एंट्री थी, क्वालिफिकेशन। और गौड़ीय संप्रदाय में ऐसी मान्यता है और थी कि हमारे पास श्रीमद् भागवत है जो वेदांत सूत्र पर किया हुआ ऑफिशियल भाष्य है, वेदव्यास जी ने, उन्होंने स्वयं वेदांत सूत्र पर भाष्य करके श्रीमद् भागवत का लेखन किया है, तो हमें अलग से भाष्य लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसी हमारी मान्यता है। तो इसीलिए गौड़ीय संप्रदाय को उस अखिल भारतीय गोष्ठी में प्रवेश देना अस्वीकार किया गया। तो विश्वनाथ जी उस समय बहुत बूढ़े थे और उनके साथ थे बलदेव विद्याभूषण, वो थोड़े युवा अवस्था में थे, बड़े विद्वान पंडित थे वो। तो उन्होंने आके खबर दिया कि महाराज जी हमको प्रवेश नहीं मिल रहा है क्योंकि हमारे पास भाष्य नहीं है। तो उनको लगा कि अगर हम इस गोष्ठी में नहीं जाएंगे तो चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय की मान्यता ही समाप्त हो जाएगी, ये बाकी संप्रदाय के लोग चैतन्य महाप्रभु संप्रदाय को समाप्त कर देंगे पूरा। तो हमारे संप्रदाय को अगर पुनः स्थान प्राप्त करके देना है, मान्यता प्राप्त करके देनी है, तो आपको जाना होगा उसमें। तो वहाँ पर भी गए तो वहाँ पर भी उनको नकार दिया गया कि आपके पास भाष्य नहीं है, यू कैन नॉट एंटर, यू कैन बी रजिस्टर्ड, नॉट क्वालिफाइड। तो लोगों ने उनका बहुत हंसी मजाक उड़ाया, अरे आपके गौड़ी संप्रदाय कौन जानता है उसके अंदर क्या है, कुछ भाष्य नहीं है, कुछ नहीं, राजा रानी की सेवा करते हैं, ऐसा बहुत सारा उसमें उन्होंने खोट निकाला। शास्त्र में कहीं भी वेद में लिखा नहीं है कि विष्णु के साथ में राधा रानी या विष्णु लक्ष्मी की सेवा होनी चाहिए। ऐसे करके उधर उस समय राजा था जयसिंह, उसके घर पे राधा गोविंद के साथ राधा जी भी खड़ी थी, वो मूर्ति भी निकाली गई। बड़ा उधर उथल पुथल हो गया स्पिरिचुअल, हमको अभी इसका आज समझ में नहीं आएगा, हमारे आज ऐसा कोई होता नहीं है, कहीं किसी की मूर्ति निकाल दी कि उसको फर्क नहीं पड़ता है। उस समय पर राधा गोविंद जी के बड़े मंदिर में राधा रानी का विग्रह निकाला गया तो बड़ा भयंकर हलचल मच गया था, लोग बड़े दुखी हो गए थे। उस समय उनको बोला, 3 दिन की गोष्ठी हमारी है, 3 डेज कॉन्फ्रेंस, 3 दिन में तुमको भाष्य लेके आओगे, तुमको स्वीकार करेंगे। 3 या 7 दिन का था कुछ, मतलब शॉर्ट पीरियड था बहुत। तो अभी लिखने को बैठेंगे ना, अगर आप विद्वान भी है और वेदांत सूत्र पर भाष्य लिखने को बैठेंगे तो कई साल लगेंगे आपको, 7 दिन में कैसे पूरा करेंगे, और नहीं करेंगे तो मान्यता खत्म हो जाएगी लोगों के सामने। तो ये जयपुर में था, सब कुछ चल रहा था वो, तो जयपुर में ये गोविंद जी के मंदिर में गए, विनोद भगवान गोविंद जी के सामने, और रो रो कर उन्होंने बताया उनको कि भगवान गोविंद जी हमारे संप्रदाय की इलाज आपके हाथ में है, आप ही कुछ चमत्कार करो। तो बीच रात में मंदिर बंद था, तब ये रो रहे उनके सामने बैठकर, बलदेव विद्याभूषण। तो बलदेव विद्याभूषण के भाव के कारण गोविंद जी प्रकट हो गए, तब वो गोविंद जी वहां पर जा चुके थे, वो इसकी भी लंबी कहानी है, वहाँ पर जा चुके थे। तो गोविंद जी प्रकट हुए, उन्होंने कहा डोंट वरी, मैं जो कह रहा हूँ उसको लिखते जाओ, मैं आपको देता हूँ रेडीमेड भाष्य। तो एक रात में उन्होंने सब लिखवाया उनसे, जो डिक्टेट करने पर भी महीने महीने लगते उसको उतारने के लिए, वो एक रात में उन्होंने उतरवा लिया उनसे हाथ से, मतलब सब चमत्कार किया भगवान ने। और गोविंद जी ने कहा कि इसको गोविंद भाष्य के नाम से प्रकट करो और जाओ सभा में कल। तो रात भर लिखा और नेक्स्ट डे लेकर गए वो, और वो पढ़कर सारे साधु महान जितने विद्वान थे वो दंग रह गए, बोले 7 दिन एक रात में कोई लिख के ला सकता है, इम्पॉसिबल है ये सब कुछ। और जो पढ़ा उन्होंने वो देखकर नतमस्तक हो गए, बलदेव जी का वो तो सिंहासन में बिठाकर सत्कार किया उनका और संप्रदाय को मान्यता दिया उन्होंने, ये सब विश्वनाथ ठाकुर जी की कृपा थी। इसको कहते हैं स्पिरिचुअल रेनेसांस, आध्यात्मिक क्रांति, हाँ, पुनरुज्जीवन किया उन्होंने अपने संप्रदाय का। तो उस गोविंद देव को फिर नाम रखा गया विजय गोविंद, और वो विग्रह गोविंद जी ने स्वयं बलदेव जी को दिए पूजा करने के लिए, वो विग्रह लेकर वो भाष्य लेकर वो वृंदावन लौट के आए, और विश्वनाथ जी उसी मंदिर में थे जहाँ गोकुलानंद जी का सेवा हो रहा था। तो भाष्य भी उनको सुपुर्द किया गुरु जी के रूप में, उनके विग्रह भी मंदिर में स्थापन हो गए। तो कौन है विग्रह? वो राधा विजय गोविंद। और उस मंदिर में एक और अद्भुत चीज है, एक गोवर्धन शिला है चौकोनी ब्राउन रंग की, जिस पर एक थंब प्रिंट है। श्री चैतन्य महाप्रभु जब रघुनाथ जी को मिले ना, रघुनाथ दास जी को, तो चैतन्य महाप्रभु एक गोवर्धन शिला अपने गले में पहनते थे हमेशा, गुंजमाला के साथ। गुंजमाला पता है क्या होता है? लाल रंग के मणि और ब्लैक डॉट होता है उसके ऊपर, वो पेड़ पे आते हैं मणि, पेड़ पे आते हैं तो मैच्योर होते हैं ना, मैच्योर तो मणि अपने आप निकल जाते हैं उसमें से। तो मणियों की माला बनाकर कृष्ण भी पहनते थे, राधा रानी भी पहनती थी, वृंदावन की बड़ी विशेषता है वो गुंजमाला। तो चैतन्य महाप्रभु गुंजमाला और उसमें लॉकेट के रूप में एक चौकोनी ब्राउन रंग की गिरिराज की शिला पहनते थे, और दिन रात उनके आंखों से प्रेम के अश्रु बहते थे, उससे वो शिला का स्नान हुआ करता था, अभिषेक कॉन्स्टेंट। तो जब वो रघुनाथ दास जी को मिले, उन्हें उनको आदेश दिया कि राधा कुंड का संवारो उसको आप, तो उन्होंने वो सेवा किया ना, तो उन्होंने उनको वो शिला और गुंजमाला भेंट दे दी महाप्रसाद। तो रघुनाथ दास जी ने उसकी पूजा किया राधा कुंड के किनारे जब तक वो थे। अब जब वो चल बसे तब धरोहर के रूप में वो शिला और गुंजमाला उस मंदिर में आई गोकुलानंद जी के धरोहर के रूप में। फिर जीव गोस्वामी की बहुत बाद वाली बात है, हाँ, क्योंकि जीव गोस्वामी के सामने रघुनाथ दास जी का देहांत हुआ और उसके बाद में ये विश्वनाथ जी के बलदेव विद्यावष्ण के मंदिर में आया और आज वो गुंजमाला चैतन्य महाप्रभु की और वो जो महाप्रभु जी की शिला बाद में जो रघुनाथ दास जी ने उसका पूजन किया था वो शिला और गुंजमाला उस मंदिर में है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से संक्षिप्त रूप में आपने हमको आज हमने आपको सभी विग्रहों का परिचय दिया जो वृंदावन धाम में विराजते हैं। बोलो वृंदावन धाम की जय।